तृतीय अध्याय भक्ति का स्वरूप। भक्ति मार्ग जगत और जीवन दोनों के मूल में काम है, ऐसा ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत, ऋग्वेद 8:7-17 तथा अथर्ववेद 19:52-1। प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न में जब कत्य ऋषि के प्रपौत्र कबंधी ने महर्षि पिप्पलाद से प्रजा की उत्पत्ति के संबंध में प्रश्न किया, तो उन्होंने प्रजापति को सर्वप्रथम प्रजा काम अर्थात प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाला ही कहा है। प्रश्नोपनिषद के अंतिम प्रश्न में भी जिन षोडश कलाओं का वर्णन है उनका मूल इच्छा है। एतरेय 1:1:1 तथा 1:3:1 में इसे ईक्षण कहा गया है। तैतरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली के षष्ठ अनुवाक में सो अकामयत कहकर इसे काम का ही नाम दिया गया है। गीता के तीसरे अध्याय के अंत में बाह्य स्थूल भूतों अथवा उनसे बने हुए शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे काम का वर्णन है। जो जिसका पूर्वज है, जनक है, वह अपनी संतति में आश्रय पाता ही है। काम भी सबका मूल होकर सब में समाया हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है। इसकी अव्याप्ति इसके प्रभु विष्णु रूप को प्रकट कर रही है। जो काम सृष्टि के मूल में है उसे प्रश्नोपनिषद ईक्षण का नाम देती है। प्रकृति की प्रथम विकृति में आते ही इसकी संज्ञा काम हो जाती है और मन के विकार तक पहुंचकर यह तीन दिशाओं में विभाजित हो जाता है। मन में कुछ जानने की इच्छा मनीषा कहलाती है, संवेदन क्षेत्र में यही ज्योति और क्रिया क्षेत्र में वश। वैदिक शब्द वश और अंग्रेजी का विष समानार्थक होने के कारण ध्यान देने के योग्य है के नाम से प्रख्यात है। एतरीय उपनिषद 3:2। इन तीनों की एकीकरण बुद्धि में है, परंतु मन में आते ही क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं। मन के पश्चात इंद्रियां आती हैं। मन का त्रिविध काम 10 इंद्रियों में 10 प्रकार धारण कर लेता है। काम के प्रिय और अप्रिय 2 रूप हैं। इन्हीं 2 रूपों में मन जगत के सूक्ष्म तथा स्थूल शब्द रूप रस गंध आदि और प्रपंच की विविध दृश्यावली एवं व्यापारों को विभाजित कर लेता है। इस प्रकार काम नाना इच्छाओं और वासनाओं में प्रकट होने लगता है। प्रथम विकृति में निहित काम का सूक्ष्मतम रूप क्रमशः सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से स्थूलतर होता जाता है। बुद्धि तत्व में निहित काम को समझना कठिन है, पर मन को ज्ञान भावना और कर्म की इच्छाएं समझ में आती हैं। साधारण संस्कृत मानव की भी पहुँच वहाँ तक संभव है। अतः काम को हम मनोभव मन से उत्पन्न हुआ कहा करते हैं। वस्तुतः काम मन से उत्पन्न नहीं होता, वह मन का भी बीज है। अथर्ववेद कांड 19 के सूक्त 52 का ऋषि काम का निरूपण करते हुए कहता है कि मूल काम अपने संतति स्वरूप वृहत फैले हुए काम के साथ सयोनी बना हुआ विविध रूपों में विभुर विभावा प्रकट होता है। संपत्ति, पोषण, उग्रता, ओज, स्वर्ग आदि इसके अनेक क्रिया क्षेत्र हैं। काम की प्रशंसा करते हुए मनु लिखते हैं, काम्यो हि वेदाधिगमः कर्म योगश्च वैदिकः संकल्प मूलः कामो वै यज्ञ संकल्प संभवः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हिचित् यद्यद्हि कुरुते किञ्चित् तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। मनुस्मृति अध्याय 2। वेद का ज्ञान और वैदिक कर्मयोग का अनुष्ठान दोनों ही कामना करने के योग्य है। काम समस्त संकल्पों का मूल है, यज्ञ संकल्प से उत्पन्न हुआ है। व्रत और यम नियमादि धर्म सभी संकल्प प्रसूत हैं। अकाम कामना शून्य व्यक्ति की कोई भी क्रिया यहाँ दिखाई नहीं देती। जो कुछ यहाँ किया जाता है वह काम की चेष्टा का ही परिणाम है। काम का मूल रूप हिंदी के अमर कलाकार स्वर्गीय प्रसाद जी के शब्दों में मंगल से मंडित और श्रेयस्कर है। सृष्टि के मूल में यही कार्य कर रहा है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। कामायनी सप्तम संस्करण सर्ग श्रद्धा पृष्ठ 53। जो काम मंगल से मंडित और कल्याण का निकेतन है, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है, वह प्रपंच से संबद्ध होकर लौकिक वासनाओं से विकृत अमंगल जनक और दुख का कारण भी बनता है। मानव की निम्नगा प्रवृत्ति काम के विशुद्ध स्वरूप को कलुषित कर देती है। उसकी महनीय महत्ता श्रेयकर स्थिति नष्ट हो जाती है। मानव की यह निम्नगा प्रवृत्ति क्या है? मुझे भूख लगती है, भूख से कष्ट होता है, मैं इस कष्ट का निवारण करना चाहता हूँ और उसके लिए रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, पकवान, जो कुछ मिल जाता है उसे उदरस्त कर लेता हूँ। ऐसा करने से मुझे बुभुक्षा जन्य कष्ट से त्राण मिल जाता है। इस त्राण से मुझे सुख होता है, एक इच्छा की पूर्ति होती है। पर इच्छा एक नहीं, अनेक है। उनमें से सब तृप्ति को प्राप्त नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधन चाहिए। ये साधन सबके पास नहीं है। साधनों के अभाव में इच्छाएं अतिरिक्त रहती हैं और मानसिक ग्रंथियों को जन्म देती हैं। मन की उलझन जीवन के प्राप्त सुख को भी किरकिरा कर देती है। इस उलझन को सुलझाने के लिए मैं उचित अनुचित का विचार छोड़ देता हूँ और ऐसे कार्य करने लगता हूँ जिनसे समाज उलझन में पड़ जाता है और मेरी उलझन सुलझने के स्थान पर और भी अधिक उलझ जाती है। इसके साथ एक इच्छा तृप्त होने के पश्चात पुनः अपनी पूर्ति के लिए अग्रसर होती है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैंने एक बार दूध पी लिया, परंतु कुछ समय पश्चात फिर दूसरी बार दूध चाहिए। हिटलर ने पोलैंड हस्तगत कर लिया, अब ऑस्ट्रिया या रोमानिया या यूक्रेन भी उसके आधिपत्य में आने चाहिए। एक इच्छा का अंत नहीं हो पाता कि दूसरी इच्छा अपने को पूर्ण करने के लिए खड़ी हो जाती है और पूर्ण न होने पर मन में व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही रूपों में वैसी ही ग्रंथियां उत्पन्न करती हैं। मानव जीवन इच्छाओं के इसी पुंज में तृप्ति से सुख और अतृप्ति से दुख प्राप्त करता हुआ उलझा रहता है। उसे इच्छा तृप्ति के साधन जुटाने में ही संलग्न रहना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, दासत ही गई बीती निशा सब कबहुन नाथ नींद भरी सोयो, बिछौना बिछाते ही बिछाते जीवन रूपी रात्रि का अवसान हो जाता है। प्रगाढ़ निद्रा का सुख क्षण भर के लिए भी प्राप्त नहीं हो पाता। इच्छाओं का बढ़ाना, उनकी पूर्ति के लिए उचित अनुचित सभी साधनों का जुटाना न केवल मेरे क्लेश का कारण बनता है, प्रत्युत उस समाज को भी क्लेश में डालता है जिसमें मैं रहता हूँ। बड़ी हुई इच्छाओं की पूर्ति और उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री का संचय मेरे वश के बाहर है। मैं बाहर चलता हूँ, अपने सुख के लिए समाज को और परिस्थितियों को झकझोरता हूँ। उनकी अनुकूलता मुझे कभी प्राप्त हो जाती है, कभी नहीं। अनुकूल होने पर जब उनका अहम अंदर से तड़पता है तो उनकी प्रतिकूलता और प्रतिक्रिया मुझे झकझोर देती है। परिस्थितियों के साथ मेरे इसी संघर्ष का परिणाम दुख है। मानव को जो कुछ प्राप्त है उसी से संतुष्ट होकर यदि वह अपने अधीनस्थ शक्तियों के विकास में जुटे तो वह अपने आप को क्लेशों से बहुत कुछ दूर कर सकता है। अधीनस्थ शक्तियाँ मेरे अंदर हैं, पर उनकी चिंता मुझे कब होती है? मेरी चिंता का प्रधान लक्ष्य मुझे बाहर रखी हुई वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा है जो सदैव अतृप्त रहती है। अतः अंदर से बाहर भागना ही मानव की निर्नगा प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति सुख दुख से समन्वित रहती है। अनुकूल परिस्थिति सुख और प्रतिकूल परिस्थिति दुख का हेतु है। सुख और दुख से ऊपर आनंद की अवस्था है। मानव के अंदर निहित काम का मूल रूप उसी के लिए ललायित रहता है। मानव जो बाहर की ऊंची स्थिति में पहुंचकर भी संतुष्ट नहीं होता, उसका यही कारण है। वह तृप्ति चाहता है, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि, यह उसे बाहर की वस्तुओं में नहीं मिलती। जब मानव बाहर से हटकर अंदर की ओर चलता है तो उसे तृप्ति का अनुभव होने लगता है। एक कलाकार, संगीतज्ञ या कवि अपनी कला को जन्म देकर जितनी तृप्ति प्राप्त करता है उतनी एक साम्राज्य का सम्राट नहीं। एक दार्शनिक अपने मनन, चिंतन और निधिध्यासन में उससे भी बढ़कर तृप्ति प्राप्त करता है। बाहर की सुख दुख सम्मिश्रित अतृप्ति अंदर आकर तृप्ति की अनुभूति में परिणत हो जाती है, पर पूर्ण तृप्ति वहाँ भी नहीं। काम जब तक अपने मूल रूप के साथ संयुक्त न हो जाए तब तक पूर्ण तृप्ति कहाँ? कोई कलाकार अपनी रचना को कला की पराकाष्ठा नहीं कह सकता। कोई दार्शनिक अंतिम सत्य की उपलब्धि का दावा नहीं कर सकता। पूर्ण तृप्ति तो पुण्य की पराकाष्ठा, निखिल कलाओं के स्रोत, अंतिम सत्य के साथ है जो काम का मूलाधार है, ईक्षण का केंद्र बिंदु है। वेद इसी हेतु कहता है, अंति संतम न जहाति अंति, संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अथर्ववेद 10:8-32। जीवात्मा अपने समीप स्थित प्रकृति को छोड़ता नहीं, उसके साथ बंधा हुआ है और अपने समीप विराजमान परमेश्वर को देखता नहीं, उसकी अनुभूति से अलग है। इसी कारण वह आनंद से वंचित और दुखी है। उसने आनंद की प्राप्ति में अपना कामना जाल बाहर फैला रखा है, जहां आनंद का लवलेश भी नहीं है। इस जाल को बाहर से समेटकर उसे अपनी समस्त कामना परमात्मा में केंद्रित कर देनी चाहिए, जो आनंद का धाम है। कामनाओं का यही ऊर्जस्वीकरण है। सूफीज टेक द कोर्स ऑफ लव एंड डिवोशन एंड एकॉम्पलिश देयर हाईएस्ट एम बिकॉज इट इज लव विच हैज ब्रॉट द मैन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ यूनिटी टू दिस वर्ल्ड ऑफ वैरायटी एंड द सेम फोर्स कैन टेक हिम टू द वर्ल्ड ऑफ यूनिटी फ्रॉम दैट ऑफ वैरायटी। सूफी मैसेज बाय प्रोफेसर इनायत खान। काम का यह योग ईश्वर के साथ कैसे हो? जीव अपनी इच्छाओं को पुत्र, वित्त और यश से हटाकर प्रभु की ओर कैसे उन्मुख करे? काम अपने मनोभव और विषय वासनागत रूप का परित्याग करके अपने स्रोत की ओर किस प्रकार प्रयाण करे? इस समस्या ने भी मानव के विकास पथ में अनेक विघ्न उपस्थित किए हैं। भारतीय मनीषा ने समस्या का समाधान ज्ञान, कर्म और भक्ति के साधना त्रय द्वारा किया है, पर जैसे ही साधक ज्ञान की ओर अग्रसर होता है उसकी संवेदन शक्ति उसे भावनाओं के भंवर जाल में फंसा लेती है और बेचारा ज्ञान अपना सा मुख लिए एक और उदासीन बना खड़ा रहता है। यदि जीव भावनाओं के जाल से किसी प्रकार निकल आया तो कर्म जीवन यापन की सामग्री जुटाने के लिए उसे आकर्षित कर लेता है। त्याग और वैराग्य की ओर प्रयाण करते ही संसार के वैभव विलास उसे अपनी ओर खींचते हैं। इस प्रकार प्रत्येक साधन पथ उसे प्रतिहो से ओतप्रोत प्रतीत होने लगता है। इसका एक प्रबल कारण भी है। आधुनिक जीव शास्त्र के विद्वान हमें बताते हैं कि जर्म प्लाज्म या शुक्र कीट मानव की समस्त जातिगत या वंशगत प्रवृत्तियों एवं परंपराओं का संक्षिप्त कोष है। जो प्रवृत्ति इसके आधार पर एक बार बन गई, वह अपनी समकक्ष एवं सहयोगिनी प्रवृत्तियों को समेटती हुई वासनागत संस्कारों के रूप में आगे बढ़ती चली जाती है। साधक उसकी विपरीत दिशा में चलने का प्रयत्न करता है, पर पग पग पर इन प्रवृत्तियों की प्रबलता ठोकर मारकर उसे पथ से विचलित करती रहती है। कोई भी साधन पथ इस प्रकार के अंतरालों से आक्रांत हुए बिना नहीं रहता। साधक सुख दुख के द्वंद्व में पड़ा हुआ कभी प्रकृति के प्रपंच अर्थात कर्म व्यापार जाल की ओर देखता है, तो कभी चित्त संबंधी ज्ञान गुत्थियों की ओर, कभी शरीर को संभालता है, कभी मन को। द्वंद्व के घेरे से निकलना उसके लिए दुष्कर हो जाता है। जैसा संकेत किया जा चुका है, आनंद न सत्य के प्रसार अर्थात प्रकृति के प्रपंच में है और न चित्त अर्थात जीव के ज्ञान प्रयत्न में। वह सत और चित्त दोनों से पृथक आनंद रूप परमेश्वर में है। आनंद का स्थान न शरीर है, न प्राण, न इंद्रिय, न मन और न बुद्धि। काम के मूल रूप का स्थान भी इनमें से कोई नहीं है। इसी हेतु उसकी पूर्ति में बाधाएं पड़ती हैं। शरीर, प्राण, इंद्रिय और मन के नाना रूप ही मार्ग में विघ्न बनकर खड़े हो जाते हैं। वर्षा, आंधी, शत्रुता, प्रारब्ध, आकस्मिक दुर्घटनाएं, प्रिय वियोग आदि आकर मानव की सहन शक्ति को झकझोर देते हैं। साधक पद से विचलित होकर अपनी असहाय अवस्था से क्षुब्ध हो उठता है। उसके भीतर से चीत्कार निकलता है और किसी सहायक की ओर वसा करुण नेत्रों से देखने लगता है। क्या भाई, पुत्र, पिता, पत्नी, पति या अन्य संबंधी उसकी सहायता कर सकते हैं? नहीं, वे स्वयं उसी जलित ज्वाला में विवशता की वन्नी में जल रहे हैं। जिस दाहकता से साधक निकलना चाहता है, वह उसे अपने चतुर्दिक सबके भीतर फैली हुई दिखाई देती है। ज्वाला से बचने के लिए प्रच्छाय जलीय शीतल स्थान चाहिए। दुख से प्राण पाने के लिए आनंद का निकेतन चाहिए। आनंद का यह निकेतन ईश्वर है, सच्चिदानंद परमात्मा है। सत और चित दोनों का विश्राम स्थल वही है। साधक को समस्त संसार धोखा दे दे और देता ही है, परंतु परमात्मा कभी धोखा नहीं देता। इसलिए दुख से बचने का साधन, द्वंद्व के सिंधु से संतरण पाने का अवलंबन, साधनों का साधन, अवलंबनों का अवलंबन, आश्रयों का आश्रय एकमात्र आनंद स्वरूप ईश्वर है। इसी के साथ रहना, इसी के गुण गाना, इससे हटकर अन्यत्र कहीं भी न जाना, इसी में तल्लीन और मग्न होकर निर्द्वंद विचरण करना आनंद है। यही भक्ति मार्ग है। साधकों ने परीक्षण और अनुभव करके इसे ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों से ऊर्ध्व स्थान दिया है। मानव इस मार्ग में पहुंचकर सृष्टि की सकारणता एवं उसके उद्देश्य को हृदयंगम कर लेता है। उसी समस्त क्रियाएं उसी परम सत्ता से अनुप्रेरित तथा समस्त शक्ति उसी प्राण स्रोत प्रभु से अनुप्राणित होती हुई प्रतीत होने लगती है। अतएव इन सब के सुख दुख मूलक होने की ओर से वह निरपेक्ष हो जाता है। द्वंद्व उसे फिर संतप्त नहीं करते। वह आनंद धाम परमात्मा की गोद में बैठकर आनंदमय बन जाता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति का अन्योन्य संबंध। सृष्टि के मूल में हमने जिस काम का उल्लेख किया है, वह मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक भाव है। प्रत्येक रचना अथवा कृति के पीछे यही काम भावना रहती है। ज्ञान और कर्म दोनों इसी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उपनिषदों में इसी हेतु काम के पश्चात प्रजा काम प्रजापति के तप करने का उल्लेख हुआ है, जो ज्ञान और कर्म दो रूपों वाला है। इस प्रकार रचना क्रम में परमात्मा से भाव और भाव से तप रूप ज्ञान तथा कर्म प्रकट होते हैं, जो पीछे नाम रूपात्मक जगत में परिणत हो जाते हैं। विलीनीकरण में यह क्रम विपरीत हो जाता है। नाम तथा रूप भाव में और भाव परमात्मा में लय को प्राप्त होते हैं। भक्त भी इसी प्रकार अपने चित्त वृत्तियों को नाम रूप के सहारे भाव में, फिर भाव के सहारे परमात्मा में लीन कर देता है। भक्ति योग इसी भाव पद्धति का दूसरा नाम है। भक्ति क्षेत्र में ज्ञान और कर्म भी नाम और रूप के समान ही स्थिति रखते हैं। मानवता के विकास में सबसे नीचा स्तर उन मनुष्यों का है जो तमोगुण से आच्छादित हैं, जिनकी गति विचार विहीन है। ऐसे व्यक्तियों को कर्मकांडी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। किसी गति के साथ जब तक विचार सम्मिलित न हो, तब तक उसे कर्म नहीं कहते। निद्रा में करवट लेना कर्म नहीं, शरीर की गति है। घड़ी की सुइयों के चलने को गति कह सकते हैं, कर्म नहीं। इसी प्रकार सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि का चलना गति है, परंतु जब मैं भक्ति के तत्व को हृदयंगम करने के विचार से किसी भक्ति परक ग्रंथ को पढ़ता हूँ तो यह पढ़ना कर्म है। शरीर की शुद्धि के विचार से व्रत रखता हूँ तो यह व्रत कर्म है। तमोगुणी व्यक्ति प्राय विचार शून्य होकर कार्य करता है, अतः उसके कार्य वैसी ही गति की संज्ञा प्राप्त करते हैं जैसी जड़ पदार्थों में देखी जाती है। इसी कारण तमोगुणी व्यक्ति को जड़ भी कह देते हैं। तमोगुण का यह जड़त्व रजोगुण में दूर हो जाता है। रजोगुणी व्यक्ति किसी से राग अथवा किसी से द्वेष करता है। इन्हीं दोनों भावों से उसकी समस्त क्रियाएं प्रभावित रहती हैं और इसी हेतु वह पुण्य पाप मिश्रित कर्म करने वाला कहा जाता है। कर्म यहाँ अपना कुत्सित अथवा सुंदर रूप दिखाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति की भांति प्रमाद में नहीं पड़ा रहता, वह क्रियाशील बनता है। बिना कर्म किए वह रह नहीं सकता। इस प्रकार तम विकसित होकर रज में लीन हो जाता है। विकास का यह प्रथम स्तर है जिसमें मानव अपनी सामान्य गति को कर्म का नाम देता है, वह कर्मकांडी बनता है। रजोगुण से ऊपर सत्वगुण की स्थिति है, इसे ज्ञान और प्रकाश का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म ज्ञान में लीन हो जाता है। गीता ने जो ज्ञानाग्नि द्वारा कर्म राशि का भस्म हो जाना लिखा है उसका यही आधार है। अतः विकास क्रम में जड़त्व से संबंधित गति कर्म में और कर्म ज्ञान में लीन होता है। ज्ञान किस में लीन होगा? इसे निश्चित रूप से भाव में लीन होना चाहिए जो रचना क्रम में इसका पूर्ववर्ती है। भक्ति भाव ही तो है, अतएव कर्म और ज्ञान का परिवर्तन भक्ति में होता है। यदि कोषों पर विचार किया जाए तो अन्नमय कोष प्राणमय कोष में परिणत हो जाता है। समस्त अन्न प्राण का भोजन है। प्राणमय कोष जिसे गति का मुख्य क्षेत्र कहा जा सकता है मनोमय कोष में लीन होता है। मन ही राग और द्वेष का केंद्र है और समस्त कर्म का स्रोत है। जिस कर्म के साथ मन नहीं लगा है वह कर्म ही नहीं है, गति मात्र है। मन मनोमय कोष बुद्धि विज्ञानमय कोष में लीन होता है। बुद्धि सत का अंश और ज्ञान का क्षेत्र है। यह बुद्धि अथवा ज्ञान वृत्ति जिसके सहारे आत्म तत्व में लीन होगी वह भाव ही है जिसे श्रद्धा और भक्ति भावना का नाम दिया गया है। आनंदमय कोष का संबंध इसी हेतु ईश्वर की उपासना के साथ है। साधना में सत से मुक्ति पाना अपने वश के बाहर है। भक्त को इससे छुड़ाने वाले भगवान ही है। कठोपनिषद 2:2-13 में लिखा है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नामे को बहुनाम यो विदधाति कामान। प्रभु नित्यों में नित्य और चेतनों में चेतन है। वह अकेला अनेक जीवों की कामनाओं को पूरा करता है। जीव की सर्वश्रेष्ठ कामना बंधनों से छूटकर परम गति प्राप्त करना है, इसे भगवान ही सफल बनाते हैं। अतः रिते ज्ञानान्न मुक्ति ही सिद्धांत को अकाट्य एवं अंतिम साधन समझने वाले साधक को अंत में जाकर अपनी मान्यता में परिवर्तन करना पड़ता है। वह सोचने लगता है कि जिसे छोड़ने का मैं दम भरता हूँ वह इसे छोड़ने में ही मेरे साथ लगा है। मैंने इसे छोड़ दिया है, इस वाक्य में अहंकार की छाया है। अहंकार छोड़ा नहीं जा सकता, इसे प्रभु को समर्पित करना पड़ता है। उर्दू के एक कवि ने नीचे लिखी पंक्तियों में अहंकार के त्याग में छिपे अहंकार का कितने मीठे शब्दों में वर्णन किया है कि तर्क मैं तो मायले पिंडार हो गया, मैं तौबा करके और गुनहगार हो गया। अतः वह सर्वात्मना अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देता है। यह समर्पण शरणागति प्रपन्नावस्था ही भक्ति कांड का सर्वस्व है। यही उसे पार लगाती है, सत से छुड़ाकर भगवान से मिलाती है। भक्ति की इस ऊर्ध्व अवस्था को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और कर्म दोनों ही साधन बनते हैं और दोनों ही अपने ऊपर उल्लिखित क्रमानुसार भक्ति धारा में लीन होते हैं जो भगवान की प्राप्ति का अंतिम साधन है। यह भक्ति भगवान का आत्मा से साक्षात सदस्य संबंध स्थापित कराती है, अतएव कर्म और ज्ञान दोनों से ऊपर है। भक्ति और सौंदर्य शास्त्र। प्लेटो ने ज्ञान के चार प्रकार वर्णन किए हैं। एक, ऐसा ज्ञान जो केवल आभास या छाया के रूप में है। दो, ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति की अपनी कल्पना या निजी विश्वास है। तीन, मनन से उत्पन्न ज्ञान। और चार, तत्व ज्ञान। प्रथम तीन प्रकारों में ज्ञान का कोई न कोई माध्यम या प्रतिनिधि होता है जिसके सहारे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, परंतु चतुर्थ प्रकार में कोई विशेष प्रतिनिधि रूप में नहीं रहता। जैसे किसी विशिष्ट पदार्थ की छाया दिखाई देती है, या मैं कल्पना से किसी वस्तु को अपने सामने खड़ा कर लेता हूँ, या किसी के संबंध में कुछ मनन करता हूँ, वैसे तत्व ज्ञान के समय कोई विशिष्ट पदार्थ सामने नहीं आता, प्रत्युत ज्ञान की सामान्य धारा सामने रहती है। प्रथम दो प्रकार मानव की अपनी सम्मतियाँ हैं। दूसरे व्यक्तियों की सम्मतियाँ वैसी ही हों यह आवश्यक नहीं है। वे उससे अपनी भिन्न सम्मति रख सकते हैं, परंतु तत्व ज्ञान के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मनन से उत्पन्न ज्ञान भी इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं होना चाहिए। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के श्लोक 5 में भी इसी से मिलते जुलते ज्ञान के चार प्रकारों का उल्लेख हुआ है। यथा आदर्श तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथा सुपरिव तादृशे तथा गंधर्व लोके छाया तपयोरिव ब्रह्म लोके। जैसे दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही कुछ व्यक्ति अंतिम सत्य को अपने में अर्थात अपने अनुरूप देखते हैं। साधारण मनुष्यों की अवस्था ऐसी ही होती है। कांच जैसा होता है उसके सामने आई हुई वस्तु उसी के अनुसार छोटी बड़ी अथवा लाल पीली दिखलाई देती है। मनुष्य का अंतःकरण भी मलिन अथवा स्वच्छ जैसा होता है वैसा ही उसमें अंतिम सत्ता का रूप भासित होता है। साधारण मनुष्यों से ऊंची अवस्था के व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं। वे स्वप्न देखा करते हैं, अपनी कल्पना से शून्य में भी रंग भरा करते हैं। इन व्यक्तियों की संज्ञा पितल है, अपनी वासना और संस्कारों के अनुकूल ये काल्पनिक आदर्शों की सृष्टि खड़ी किया करते हैं। तीसरे प्रकार का ज्ञान जल में पड़ती हुई परछाई व प्रतिबिंब के रूप में है। इसके देखने वाले गंधर्व हैं। जल में जिस पदार्थ का प्रतिबिंब पड़ रहा है उस पदार्थ से वह प्रतिबिंब अधिक सुंदर दिखाई देता है। इसी प्रकार वस्तुओं को सुंदर रूप में देखने वाले गंधर्व या कलाकार वस्तु के वास्तविक रूप से नहीं प्रस्तुत उसके सुंदर रूप से संबंध रखते हैं। वे सौंदर्य के उपासक होते हैं। चतुर्थ प्रकार का ज्ञान तत्व ज्ञान है, जिसमें वस्तु छाया तथा धूप की भांति स्पष्ट और साक्षात दिखाई देती है। भक्ति में ऊपर वर्णित चारों प्रकारों का ज्ञान सम्मिलित रहता है, पर विशेष रूप से भक्त विश्व के सौंदर्य से प्रभावित होकर उस सौंदर्य के स्रोत प्रभु की उपासना में मग्न होता है। सौंदर्य क्या है? क्या वह बाहर रखी कोई वस्तु है जो मुझे आकर्षित करती है, या कोई वस्तु मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं उसे सुंदर कहता हूँ? विद्वानों के मत इस विषय में भिन्न भिन्न है। कुछ विद्वान सौंदर्य को आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव और कुछ उसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मानते हैं। भक्त की तात्विक दृष्टि सौंदर्य को उसके पीछे छिपी एक अनंत सौंदर्य निधि में देखती है। उसे उषा की अरुणिमा, संध्या की स्वर्णिमा, रात्रि की श्यामता, वर्षा की सरसता, शरद की श्वेतिमा, वसंत की मधुरिमा, वनस्पतियों की हरितिमा और पुष्पों के सौंदर्य में उसी अदृश्य सुंदर की सुंदरता फूटती दिखाई देती है। नारी के बाह्य कलेवर की सुंदरता जैसे उसके आंतरिक सौंदर्य की प्रतिच्छवि है। किसी कक्ष की सजावट उसमें रहने वाले मानव की मनोवृत्ति की बाह्य अभिव्यंजक है। किसी काव्य कलाकार की अभिरुचि उसके पात्रों में निहित है। उसी प्रकार उस अमर कलाकार, उस शाश्वत कवि की सुंदर आत्मा, उसकी कृति सृष्टि के विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर हो रही है। रूफस एम जोन्स, लिट डी, पाथवेज टू द रियलिटी ऑफ गॉड, पेज 64। ब्यूटीफुल फेसेस, ब्यूटीफुल सोल्स, फेयर फॉर्म्स, नोबल क्रिएचर्स एंड लॉफ्टी एक्शंस आर विंडोज थ्रू विच द ह्यूमन सोल हियर इन अ वर्ल्ड ऑफ म्यूटेबिलिटी कैचेस ग्लिम्सेस ऑफ दैट एटर्नल ब्यूटी। उस सौंदर्य स्रोत से जो सुंदरता की धाराएं चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं, उन्हीं को ग्रहण करके विश्व के नाना पदार्थ सुंदर बने हुए हैं। भक्त इसी हेतु उस समस्त सौंदर्य प्रसार के पीछे छिपे उस परम सुंदर की उपासना करता है। उसे सुंदर ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है, इस उक्ति में अटल विश्वास होता है। अतः वह अपने उपास्य देव को सुंदर ही नहीं सत्य भी मानता है। सत्य ही आदर्श है, यह आदर्श भी उसे प्रभु में ही दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार पितरों का आदर्शवाद, कलाकारों की सौंदर्य उपासना और तत्व ज्ञानियों का अंतिम सत्य तीनों अपने अतीव निर्मल रूप को लेकर भक्ति में समन्वित हो जाते हैं। भक्त मानव की सहज बुद्धि, स्वाध्याय से उत्पन्न ज्ञान, सदाचार, कला प्रियता, सुंदरता और मनन तथा निधिध्यासन के अंतिम लक्ष्य का केंद्र अपने भगवान को ही समझता है। उसे परोपकार के कार्यों में, कलाकार की कला में, दार्शनिकों के चिंतन में तथा आदर्श के लिए मर मिटने वाले बलिदानों के अमर उत्सर्ग में प्रभु के ही दर्शन होते हैं। वह इस प्रकार के अभिव्यक्तियों में प्रभु के चमत्कार का अनुभव करने लगता है और परिणामतः उसका उपासक बन जाता है। भक्ति के अंग आविर्भाव, भाव और तिरोभाव, उद्भव, स्थिति और प्रलय विश्व की प्रत्येक वस्तु के साथ संबद्ध हैं। बाह्य जगत में ये घटनाएं कार्यकरण संबंध से प्रकट होती हैं। चेतन जगत में ये पवित्र और अपवित्र कर्मों के परिणाम स्वरूप दिखाई देती हैं। इन्हीं तीनों के क्रम में काल का भी अस्तित्व है। प्राकृतिक जगत, चेतन जगत और काल से भी ऊपर एक तत्व है जो कार्यकारण संबंध से पृथक है, पुण्य और पाप से परे है तथा भूत और भविष्य से भी अलग है। भक्ति का लक्ष्य भक्त को इसी तत्व की प्राप्ति कराना है। यह तत्व ईश्वर है। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भक्त अपना व्यक्तित्व रखता है जिसमें शरीर, हृदय और बुद्धि तीन तत्वों की प्रधानता है। इस व्यक्तित्व का संबंध उसके पिता, माता, बंधु, पत्नी, पुत्रादि के साथ है जो उसके परिवार के अंग है। सामाजिक क्षेत्र में उससे संबंधित गुरुजन, रक्षक, व्यवसायी और श्रमजीवी हैं। इन सबको पृथ्वी माता, वायुमंडल और सूर्य जीवन यापन के उपादान प्रदान करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्त या तो इन सब का परित्याग करे और सब तजी हरि भज की उक्ति को अपनाए अथवा इन सब के प्रति उन्मुख रहे। सबका त्याग कर देना तो बात की बात है, जब तक शरीर है तब तक किसी को भी तो छोड़ा नहीं जा सकता, अतः दूसरा मार्ग ही स्वीकरणीय है। भक्ति कांड इसी हेतु भक्त को कर्तव्य पालन के पथ से पृथक नहीं करता, केवल ईश्वरोन्मुख बने रहने पर अधिक बल देता है। प्रभु के आश्रय में रहते हुए भक्त को विविध कर्तव्यों का पालन करना है, अतः ये सब भक्ति के अंगों के अंतर्गत आते हैं। कर्तव्यों का पालन भक्ति की भूमिका को दृढ़ करने वाला है, उसे हिलाने वाला नहीं है। गीता कहती है, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। 17:3 पुरुष श्रद्धा का ही बना हुआ है, वह जिसमें श्रद्धा रखता है वैसा ही बन जाता है। अतः श्रद्धा सत्य में, शुभ में, सुंदर में रखनी चाहिए, अनृत, अशुभ और असुंदर में नहीं। भक्ति का मूल आधार श्रद्धा ही है। श्रद्धा का सर्वप्रथम स्थान माता पिता और आचार्य हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण इन्हीं तीनों द्वारा होता है। माता पिता से हाड़ मांस मन और बुद्धि का संघात शरीर प्राप्त होता है, तो आचार्य से सांस्कृतिक संपत्ति। इन तीनों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना भक्ति का प्रथम अंग है। जीवन का प्रथम भाग क्रमशः इन्हीं तीनों के साथ व्यतीत होता है। यह जीवन निर्माण का समय है। इस काल में ब्रह्मचर्य द्वारा मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों को विकसित तथा पवित्रता की ओर उन्मुख करना होता है। इनके अभाव में जीवन जीवन नहीं, जरण और मरण ही है। मानव की ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेन्द्रियां बाहर की ओर खुली हैं, परंतु अंतःकरण के चारों भाग अंदर हैं। अतः उसकी एक बहिर्मुखी प्रवृत्ति है, दूसरी अंतर्मुखी। बहिर्मुखी प्रवृत्ति में उसके सामने भोगों का वैभव है, जिसे भोगने के लिए ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियों को सहायता देती हैं, पर भोगों को संपूर्ण रूप से कोई भोग नहीं सकता। इन्हें भोगने के लिए प्रथम तो जीवन ही सीमित है, फिर भोग इंद्रियों के तेज को भी नष्ट कर देते हैं और वितृप्ति नहीं तृष्णा पैदा करते हैं। अतः भोगों को त्याग भाव से भोगना चाहिए। त्याग अंतर्मुखी प्रवृत्ति है, जिसमें तप और संयम की प्रधानता है। तप तथा व्रत के द्वारा मैं भोगों के प्रभाव को दूर करता हूँ और ब्रह्मचर्य तथा अन्य संयमों के द्वारा उन पर अपना स्वामित्व स्थापित करता हूँ। अतः त्याग अर्थात तप और संयम भक्ति का दूसरा अंग है। भोगों को भोगना तो पड़ता ही है। भोग की इस व्यय क्रिया में प्राकृतिक देवों द्वारा उत्पादित भोग की सामग्री में कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए मुझे सामग्री का उत्पादन करना चाहिए। भोगोत्पादक साधनों में यज्ञ की प्रधानता है। यज्ञ परजन्य को उत्पन्न करता है, परजन्य से वृष्टि होती है जो अन्न की उत्पत्ति का साधन है, और अन्न से प्राणियों का विकास होता है। यज्ञ का अनुष्ठान इसी हेतु भक्ति का तीसरा अंग कहलाता है। जीवन का दूसरा भाग प्रायः सामाजिकता से संबद्ध है। इसमें मानव का सीधा संपर्क अपने सहवर्गियों तथा अन्य व्यक्तियों से होता है। मानव को इस क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान भावना तथा छोटों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। मैत्री के साथ द्वेष परित्याग, सम्मान के साथ नम्रता और सहानुभूति के साथ करुणा संलग्न रहती है। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सामाजिक जीवन के प्राण हैं, अतः इनका सेवन भी जागरूक होकर करना पड़ता है। यह व्यवहार भक्ति का चतुर्थ अंग है। जीवन के तीसरे भाग में विशेषता और वैसे सामान्यतः व्यक्तिक विकास पर ध्यान देना पड़ता है। शौच, संतोष, तप, ब्रह्म ज्ञान और ईश्वर परायणता इस विकास के मूल स्तंभ है। जीवन यात्रा में सुकृत का, पुण्य कर्मों का, पवित्रता का मुख्य स्थान है। अपवित्र आत्मा प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता। अपवित्रता मन की आसुरी वृत्ति में निहित है, अतः उसका दमन करना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों को विचार पूर्वक विषयों से हटाना, मन को बुद्धि और विवेक के नियंत्रण में रखना तथा बुद्धि को भी दैवी अध्यात्म पथ पर चलाना पवित्रता संपादन के स्वर्ण सोपान है। इन पर चलकर भक्त ऐसी स्थिति में आसीन हो जाता है जहाँ विकारों की बाढ़, अधोगति की आंधी और दासता की दावा पहुँच भी नहीं सकती। इस दैवी संपत्ति का अर्जन भक्ति का पंचम अंग है। जीवन का चतुर्थ भाग पूर्ण पवित्रता समरस अवस्था के संपादन का काल है। पूर्ण पवित्र तो प्रभु ही है, पर वे सदैव पूर्ण पवित्र रहते हैं। उनकी यह समरस अवस्था नित्य है, शाश्वत है। जीव प्रकृति के संपर्क से अपवित्र हो जाता है, अतः उसे यह अवस्था पूर्ण पवित्र प्रभु के संपर्क से प्राप्त करनी पड़ती है। यह अंतिम कार्य भक्ति द्वारा ही संपादित होता है। अनवरत ब्रह्म भावना में लीन रहना, सतत प्रभु का चिंतन करना, उसके गुणों में मन और बुद्धि को रमाना, अपनी बुद्धि को अपने आप को उसके साथ एक कर देना, अपनी समस्त कामनाओं को प्रभु में केंद्रित कर देना, प्रभु के अतिरिक्त और किसी कामना का न रहना, भक्ति योग की प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे जल पर्वत की उच्चावच भूमि पर बरसकर शिलाखंडों से टकराता हुआ नीचे गड्ढों में गिरता है और व्याकुल होकर विविध प्रकार के थपेड़े खाता हुआ बहता फिरता समतल भूमि पर पहुंचकर शांति प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीव अपवित्र होकर विविध योनियों में भटकता हुआ निदारुण निवृत्ति के क्लेशों को सहन करने के पश्चात जब समरस पवमान प्रभु के सानिध्य में पहुँचता है तो शांत हो जाता है, उसके सारे क्लेश कट जाते हैं, आनंद धाम में पहुंचकर वह आनंद बन जाता है। प्रभु की यह प्राप्ति, आनंद का यह आगम भक्ति द्वारा ही साध्य है। तर्क से, प्रवचन से, श्रवण से, मनन से, यहाँ तक कि मेधा से भी इसकी सिद्धि नहीं होती। एकमात्र भक्ति ही भक्त को इस भूमा अवस्था तक पहुंचाती है। अन्य साधन जिनका हमने अभी वर्णन किया है भक्ति के अंग हैं। वे भक्ति भावना को दृढ़ करने के साधन हैं, पर ये अनिवार्य हैं, इसमें संदेह नहीं। भक्ति के अंगों द्वारा मानव जड़ता से निकल कर प्राण में, प्राणवत्ता से हटकर मनोमय, मननशीलता से हटकर विज्ञानमय और भक्ति द्वारा विज्ञान से भी ऊपर आनंदमय बनता है। महात्मा टॉलस्टॉय ने भगवत भक्ति के क्षणों को अपने जीवन के अमूल्य क्षण कहा है। वे लिखते हैं, I desired, I longed to be absorbed in the all-enfolding being. I prayed him to forgive my sins, but no, I did not ask that, because I felt that by giving me these blessed moments, he had pardoned me. Life of Tolstoy. प्रार्थना के क्षणों में मैं चाहता था उस सर्वव्यापक प्रभु के भीतर अपने को खो दूं। मैं प्रभु से अपने पापों को क्षमा कर देने की प्रार्थना करता था, पर वह मैंने कभी नहीं की, क्योंकि मुझे अनुभव हुआ कि प्रार्थना के इन वरद मंगल क्षणों को देकर प्रभु ने मेरे सब पाप क्षमा कर दिए हैं। जीवन रथ को लिए हुए काल अश्व द्रुत गति के साथ दौड़ा चला जा रहा है, किसका सामर्थ्य है जो इसे पकड़ सके। मृत्यु सबको निगलती चली जा रही है, किसकी शक्ति है जो इसे निगल सके। कर्म न काल को पकड़ सकता है, न मृत्यु को मार सकता है। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी काल के गाल में जाते ही सारा ज्ञान भूल जाता है, पर भक्त जितनी देर भक्ति भाव की अवस्था में रहता है उतनी देर के लिए वह काल को पकड़ कर अपने अधीन कर लेता है और मृत्यु को भी मार डालता है। योगी केवल समाधि में इस अवस्था को प्राप्त कर पाता है। समाधि में उसे काल की गति का ध्यान ही नहीं रहता। समाधि है ही ध्यान से ऊपर की अवस्था। योगी उस समय काल में नहीं, प्रत्युत काल की नित्यता शाश्वत अवस्था उसके अंदर रहती है। बाह्य संसार उस समय योगी की दृष्टि में नहीं रहता, वह उसके अंदर खो जाता है। यही अवस्था भक्त की भक्ति भाव में डूबकर होती है। इससे ऊपर जब भक्ति भक्त को भगवान का साक्षात करा देती है, तब तो न वहाँ काल की गति हो पाती है, न मृत्यु ही पहुँच सकती है। वह तो मृत्यु से अतिक्रांत अमृत अवस्था है। महात्मा अरविंद ने इस अमृत अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो विचार प्रकट किए हैं, वे ऊपर वर्णित विचारों से बहुत कुछ साम्य रखते हैं और मनन करने योग्य हैं, अतः हम उन्हें नीचे उद्धृत कर रहे हैं। उनके मतानुसार अब तक की हमारी साधना परंपरा में शरीर, इंद्रिय, हृदय तथा मन को क्रमशः पृथक रखने या नष्ट करने पर बल दिया गया है, जिससे हम उस परम शांत महान अनंत सत्ता में अपने को मग्न कर सकें। परंतु पूर्ण ज्ञान आत्मसत्ता की सर्वांग पूर्णता की कल्पना करता है और इसके लिए हमें केवल अपनी अचेतनता, अज्ञान और उनके परिणामों को दूर करना है। सर्वप्रथम अपनी सत्ता के असत अंश अहम मान्यता को दूर करना चाहिए, तभी सत्य सत्ता हमारे अंदर अपना प्रकाश कर सकती है। जीवन तत्व अर्थात प्राणवत्ता का असत अंश भोग संबंधी शारीरिक लिप्साओं में प्रकट होता है। इसे दूर कर देने से दिव्य शक्ति से युक्त हमारा सत्य जीवन तत्व तथा दैवी हर्षोल्लास प्रकाशित होंगे। इंद्रियों का असत अंश प्राकृतिक दृश्यों के प्रिय तथा अप्रिय विविध संवेदनों के अधीन होने में प्रकट होता है। इसे दूर कर देने पर दृश्यों में अंतर्हित दिव्यता की ओर हमारी इंद्रियां जा सकेंगी और पवित्रता के साथ उनका संपर्क होगा। हृदय का असत अंश विक्षुब्ध आसक्तियों, इच्छाओं और विविध राग द्वेष परक मनोवेगों में दिखलाई देता है। इसे पृथक कर देने से समस्त प्राणियों के लिए दिव्य प्रेम भाव लिए एक गंभीर हृदय प्रकाशित हो उठेगा, जो अनंत से संबंध जोड़ने के लिए अपरिमित भावों से भरा होगा। अंत में मन का असत अंश मनन शक्ति की अपूर्णता, मूर्खतापूर्ण विधि निषेधों तथा सीमित एवं विकेंद्रित मान्यताओं में प्रकट होता है। इसे दूर कर देने से मन की महती शक्ति ईश्वर, जीव, प्रकृति और ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन कर सकेगी। एलिमिनेट द फैलेसिटी ऑफ द बीइंग विच फिगर्स एज द ईगो, देन द ट्रू बीइंग कैन मैनिफेस्ट इन अस। एलिमिनेट द फैलेसिटी ऑफ द लाइफ विच फिगर्स एज मेयर वाइटल कार्विंग एंड द मैकेनिकल राउंड ऑफ आवर corporal existence, our true life in the power of the Godhead and the joy of the infinite will appear. Eliminate the fallacy of the senses with their subjection to material shows and to dual sensation. There is a greater sense in us that can open through these to the divine in things and divinely reply to it. Eliminate the fallacy of the heart with its turbid passions and desires and its dual emotions. A deeper heart in us can open with its divine love for all creatures and its infinite passion and yearning for the responses of the infinite. Eliminate the fallacy of thought with its imperfect mental construction, its arrogant asserations and denials, its limited and exclusive concentrations. A greater faculty of knowledge is behind that can open to the truth of God and the soul and the nature and the universe. Quoted from the Advent in Amrit Bazar Patrika, issue of 4th December 1953. इस रूप में अभ्यास करता हुआ साधक अपनी शक्तियों का कुंठित नहीं करता, प्रत्युत उन्हें उनके असत आसुरी एवं अवयान की ओर ले जाने वाले रूप से हटाकर उर्ज्वसित कर लेता है, जिसमें वे दिव्यता के साथ संयुक्त हो सके और उत्थान पर चढ़कर आत्मा को परमात्मा से मिला सके। भक्ति साधन है या साध्य? पीछे भक्ति के स्वरूप और अंगों के संबंध में जो कुछ लिखा गया है उससे प्रकट होता है कि भक्ति साधन और साध्य दोनों ही है। जैसे कोई व्यक्ति छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ता है तो उसे अंतिम सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक सीढ़ियां पार करनी ही पड़ती हैं। उसी प्रकार प्रभु प्राप्ति के लिए भक्ति अंतिम सीढ़ी और इस अंतिम सीढ़ी रूपी भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति के जिन अंगों का वर्णन हुआ है वे प्राथमिक सीढ़ियां हैं। नारद ने भी भक्ति सूत्रों में इस प्रश्न को उठाया है। सूत्र 25 में उन्होंने भक्ति को कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर माना है। कर्म ज्ञान और योग की स्थिति क्या है? नारद कहते हैं कि कुछ आचार्यों के मत में ये भक्ति के साधन हैं। ज्ञान आदि के साधन द्वारा भक्ति सिद्ध होती है। आगे 29वें सूत्र में वे लिखते हैं कि कुछ आचार्य ज्ञान और भक्ति को अन्योन्याश्रित मानते हैं। उनके मतानुसार ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान की सिद्धि होती है। आचार्य वल्लभ ने ब्रह्म सूत्र 3:3:29 के अनुभाष्य में भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों को भिन्न भिन्न माना है। दोनों का फल भी उनकी सम्मति में पृथक पृथक है। ज्ञान मार्ग का फल केवल अक्षर ब्रह्म का ज्ञान और उसके द्वारा उपलब्ध मोक्ष स्वर्ग प्राप्ति है, पर भक्ति मार्ग का फल पुरुषोत्तम में प्रवेश है। भक्ति मार्ग ज्ञान निरपेक्ष है, परंतु प्रेम भक्ति से उत्पन्न पुरुषोत्तम का ज्ञान लीला प्रवेश का साधक है। 30वें सूत्र में नारद ने सनक, सनंदन, सनत कुमार आदि ब्रह्म कुमारों का मत दिया है, जो भक्ति का फल भक्ति को ही मानते हैं। भक्ति स्वयं फल रूपा है, इसी हेतु उसके साधनों का वर्णन भी आचार्यों ने किया है। भक्ति फल रूपा है, इसका अर्थ क्या है? नारद ने अपने भक्ति सूत्र संख्या 59 और 60 में इसका उत्तर दिया है। उनके मतानुसार भक्ति स्वयं प्रमाण रूप है, इसके लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भक्ति शांति रूपा और परमानंद रूपा है। शांडिल्य इस संबंध में अपने भक्ति सूत्र संख्या 29 में काश्यप का मत उद्धृत करते हैं, जो भक्ति को ऐश्वर्य परा मानते हैं। ऐश्वर्य का अर्थ है ईश्वर का भाव, अतः भक्ति ईश्वर भाव प्रधानता का नाम है। शांडिल्य ने सूत्र 30 में बादरायण के मत का भी उल्लेख किया है, जो भक्ति को आत्मिक परा मानते हैं। एक आत्म तत्व की ही जिसमें प्रधानता है वह भक्ति आत्मिक परा है। ईश्वर और आत्म तत्व में भारतीय दार्शनिक अंतर करते आए हैं। उनके मत में सत्वगुण की सर्वोच्च स्थिति ईश्वरत्व है, आत्म तत्व इससे पृथक है, वह त्रिगुणातीत है, सत्वगुण से भी ऊपर। सूत्र 31 में शांडिल्य अपने मतानुकूल भक्ति को उभय परा कहते हैं, जिसमें ईश्वरत्व और आत्म तत्व दोनों की प्रधानता है। नारद जिस भक्ति को स्वतः प्रमाण रूपा, शांति रूपा और परमानंद रूपा कहते हैं, शांडिल्य जिसे ऐश्वर्य परा और आत्मिक परा मानते हैं, वह साधन और साध्य दोनों रूपों को अपने अंदर समाविष्ट किए है। भक्त स्वतः प्रमाण और शांति रूप अथवा ईश्वर भाव परायण कुछ साधन करने के पश्चात ही बनता है, ऐसा हम पीछे लिख चुके हैं। अतः शांति रूप बनना स्वतः एक सिद्धि की अवस्था है। भक्त अनेक साधनों के व्यायाम से निकलकर इस अवस्था को प्राप्त करता है। वह इस अवस्था की जन्म जन्मांतर से आकांक्षा करता आया है, पर यह अंतिम अवस्था नहीं है। शांति सत और चित्त की ऊर्ध्व अवस्था है। यह चित्त वृत्तियों के व्युत्थान का शमन मात्र है। आत्मिक परा और परमानंद रूपा अवस्था इसके पश्चात आती है। परमात्म तत्व ही आनंद रूप है। इसे प्राप्त करने के लिए जीव को निरावरण, समस्त संशोभों से विहीन शांत रूप होना पड़ता है। यही नारद और शांडिल्य की परा या मुख्य भक्ति का रूप है। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 29 के श्लोक 11 से 14 तक भी इस विषय में देखने योग्य हैं। इस स्थल पर व्यास जी ने भक्तों के निर्गुण और सगुण दो भेद किए हैं। तामस, राजस और सात्विक तीन प्रकार के सगुण भक्तों का वर्णन करने के उपरांत व्यास जी निर्गुण भक्त के संबंध में लिखते हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशये मनोगति रविच्छिन्नाम यथा गंगाम भसो बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहेतुक्य व्यवहिताया भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना महोत्सवनं जनः विना महत्सेवनं जनः स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः येनाति व्रज्य त्रिगुणम् मद्भावायोपपद्यते। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से जिसके मन की गति अविच्छिन्न रूप से सबके हृदय रूपी गुहा में विराजमान मुझ में पुरुषोत्तम भगवान में निष्काम रूप से और अनन्य प्रेम पूर्वक लगी रहती है, वह निर्गुण भक्त है। इस भक्ति में अकारण और अव्यवहित प्रेम सहित भगवान का निरंतर ध्यान बना रहता है। ऐसे निष्काम भक्त मेरी सेवा के बिना मोक्ष के किसी भी स्वरूप को दिए जाने पर भी ग्रहण नहीं करते। मोक्ष के पांच स्वरूप इस स्थल पर वर्णन किए गए हैं, सालोक्य भगवान के नित्य धाम में निवास, सारष्टि भगवान के समान ऐश्वर्य भोग, सामीप्य भगवान की नित्य समीपता, सारूप्य भगवान के समान रूप और सायुज्य या एकत्व भगवान के साथ एक हो जाना। भगवत सेवा के लिए मोक्ष का भी तिरस्कार करने वाले ये निर्गुण भक्त भगवत भक्ति को ही अपना परम पुरुषार्थ समझते हैं। भक्ति की असाध्य अवस्था है। साध्य रूपा इस भक्ति में भक्त तीनों गुणों का अतिक्रमण करके भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। नारद ने ऐसे भक्तों को एकांती भत्ता एकांतिनो मुख्या नारद भक्ति सूत्र 67 संज्ञा दी है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना है। ऐसे भक्त स्वयं तो कृतार्थ होते ही हैं, अपने पितरों को भी कृतकृत्य कर देते हैं। देवता ऐसे भक्तों को देखकर आनंद में मग्न हो नाचने लगते हैं और यह पृथ्वी सनात हो जाती है। नारद भक्ति सूत्र 71 गीता में भगवान कृष्ण ने जहां अर्जुन को निस्त्रैगुण्य बनने के लिए कहा है गीता 2:45 वहां उनका भाव इसी साध्य रूपा भक्ति को प्राप्त कराना है। गीता में सतो गुण का स्वरूप निर्मल ज्ञान संगी और प्रकाशक कहा गया है। गीता 14:6 रज और तम इससे एकांत विपरीत हैं। वहां मल है, अज्ञान है, अंधकार है। इस अध्याय के प्रारंभ में ही हमने जिस काम का उल्लेख किया है उसका मूल रूप इस सतो गुण से संबद्ध है और अथर्ववेद के काम सूक्त में इसी से स्वर्ग प्राप्त होने का भी वर्णन है। कामे ना जनयन स्व अथर्ववेद 19:52-3 यह स्वर्ग वेद के शब्दों में तृतीय धाम है जहाँ दिव्य गुण संपन्न देवता विहार किया करते हैं। यजुर्वेद 32:10 काश्यप ने शांडिल्य भक्ति सूत्र 29 के अनुसार इसी से संबद्ध भक्ति को ऐश्वर्य रूपा कहा है और गीता ने इसके फलस्वरूप स्वर्ग में ऐश्वर्य भोगने के पश्चात पुनः मर्त्यलोक में आने की बात लिखी है। निस्त्रैगुण्य अवस्था इससे पृथक है। यह साध्य रूपा आनंदमयी भक्ति से संबंध रखती है। ऊपर के विवेचन से भक्ति साधन और साध्य दोनों प्रकार की सिद्ध होती है। साध्यावस्था में भक्ति के साधन ज्ञान कर्म योग आदि हैं और साधन रूप में भक्ति का साध्य परमानंद स्वरूप परमात्मा है। आचार्यों ने भक्ति को साध्य मानकर प्रेम के सातत्य रूप को भी प्रधानता दे दी है। भक्ति के द्वारा वे किसी फल की प्राप्ति को हेय स्थान देते हैं। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है। मन जब किसी साधन के द्वारा फल विशेष की उपलब्धि कर लेता है तो साधन की ओर से उदासीन और कभी कभी परांगमुख भी हो जाता है। साधन का कोई भी महत्व उसकी दृष्टि में नहीं रहता। जिस फल का आगम हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, अतः फल से भी एक दिन हाथ धोना पड़ता है। अब जो अवस्था शेष रहती है उसमें वह फल तो रहता नहीं, साधन पहले से ही छूट चुका है, अतः ऐसी अवस्था मन के लिए अवांछनीय हो उठती है। पर यदि मन साधन से उदासीन न रहा, उसका अभ्यास अनवरत रूप से करता रहा तो उसके लिए आश्रय बना रहता है। साधन में लगे रहने से मन उसमें रमण करने लगता है और यदि साधन स्वयं महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान हुआ तो मन की विषामाकांक्षिणी गति के लिए वह अनुपम साध्य सिद्ध होता है। इन दोनों ही कारणों से भक्ति के साध्य रूप को महत्ता प्राप्त हो जाती है। एक तो मन का भजन साधन अभ्यास नहीं छूटता, शून्यता नहीं रहती। द्वितीय से साधन में ही आनंद का अनुभव होने लगता है। साधन को ही वह साध्य समझने लगता है और फलाकांक्षा की ओर नहीं जाता। भक्ति के इस प्रकार सतत अव्याहत एवं अहेतुक बने रहने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। भक्त को प्रभु प्रेम स्रोत स्वरूप अनुभव होने लगते हैं अथवा प्रेम ही प्रभु के रूप में परिणत हो जाता है। भक्ति का फल 1. स्वाधीनता। चार्ल्स गोरे अपने ग्रंथ द फिलोसफी ऑफ द गुड लाइफ के पृष्ठ 239 पर लिखते हैं, Mankind is balanced between two worlds. If he yields himself to the flesh, the lower world, he changes his freedom into slavery, and a slavery which ends in destruction. But the only escape from such slavery is by surrender to the higher will of God. Man is bound to lose his balanced independence in the one direction to his destruction, or in the other to his redemption and real self-realization. God's service is the only real freedom. मानव दो संसारों के बीच संतुलित है। यदि वह अपने से निम्नतर संसार पार्थिवता की ओर झुकता है तो उसकी स्वाधीनता पराधीनता में परिणत होती है, या पराधीनता ऐसी है जिसका अंत में विनाश होता है। इस पराधीनता जन्य विनाश से बचने का एक ही उपाय है कि जीव अपने से उच्चतर संसार प्रभु की इच्छा के आगे अपने को समर्पित कर दे। एक ओर उसका विनाश है, दूसरी ओर त्राण और आत्म साक्षात्कार। जीव की वास्तविक स्वाधीनता प्रभु की सेवा है। इस अध्याय के प्रारंभ में ही लिखा गया है कि जीव जिस प्रकृति के प्रपंच में फंसा है, जगत के जिस जटिल जाल में जकड़ा है, उसे छोड़ता नहीं है, और जिसके दर्शन से साक्षात्कार से मुक्त होगा, स्वाधीन होगा, उसे देखता नहीं है। जीव के सामने यही विषम समस्या है। चार्ल्स गोरे प्रभु की सेवा को वास्तविक स्वाधीनता कहता है। वेद ने उस सुदूर अतीत काल में ही यह संदेश दिया था कि यदि जीव को स्वाधीन बनना है तो उसे सांसारिकता को छोड़कर प्रभु परायण बनना होगा। इस समस्या के सुलझाने में जीव को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। प्रभु का प्रिय पात्र बनने के लिए उसे प्रकृति से युद्ध करना पड़ता है। वेद कहता है, युधा इत आपित्व मिच्छ से, ऋग्वेद 8:21-13। प्रभु का आपित्व अपनापन सुगमता से प्राप्त नहीं हो जाता, बड़ी रगड़ लगानी पड़ती है। बड़े बड़े आकर्षक लुभावने मोहक दृश्यों का सामना करना पड़ता है। स्वाधीनता अपना मूल्य चाहती है, फिर वह स्वाधीनता चाहे राजनैतिक हो और चाहे आध्यात्मिक। बिना युद्ध के भला कोई स्वतंत्र हुआ है? जीव को प्रकृति के पार्श्व से स्वतंत्र होना है तो उसे प्रकृति के साथ युद्ध करना होगा। अर्नेस्ट ई अनविन अपने ग्रंथ रिलीजन एंड बायोलॉजी के पृष्ठ 83 पर लिखते हैं, द होल स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, द स्ट्रगल, एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट इज रियली द इवोल्यूशन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम कैन नॉट बी गिवन, इट इज बॉर्न। विकास की संपूर्ण कहानी चर एवं अचर के बीच क्रिया और प्रतिक्रिया मय संघर्ष की कहानी है। इसी से स्वाधीनता का विकास हुआ है। स्वाधीनता दी नहीं जा सकती, वह तो युद्ध द्वारा प्राप्त की जाती है। मानव का अतीत उसके वर्तमान की संभावनाओं का जन्मदाता है। प्रकृति में वह इस संघर्ष का अनुभव कर चुका है, अतः प्रतिपल प्रत्येक पग आगे रखते हुए वह अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विषय वासना, धन अभिमान आदि से संघर्ष करता चलता है। भावी संभावनाएं उसके मार्ग को स्वच्छ एवं प्रशस्त करती चलती हैं। वह संकुचित वातावरण से निकलकर विशाल वातावरण की ओर प्रयाण करता है, जहां सूक्ष्म शक्तियां उसे और आगे बढ़ाती हैं। सृष्टि के आयोजन तथा प्रयोजन उसके समक्ष स्पष्टतर होने लगते हैं, परंतु इनका ज्ञान स्वतंत्रता नहीं है। इसे जीव को अपनी स्वतंत्रता का केवल आभास प्राप्त हो जाता है। स्वतंत्र बनने के लिए तो उसे प्रकृति के साथ युद्ध में संलग्न होना पड़ता है। निर्जीव संस्कृति के निश्चित नियम और व्यवस्थित घटना चक्र मानव को मानसिकता के विकास की ओर ले जाते हैं और उसे स्वाधीनता का स्पष्ट संकेत दे देते हैं। अतः प्रकृति को छोड़कर वह दूसरी ओर परंतु अपने अत्यंत समीप स्वाधीनता की जगमगाते हुए संसार को देखता है और अनुभव करता है कि वह केवल इंद्रियों के विषयों, अशना और पिपासा पर ही जीवित नहीं रह सकता, ये तो उसे पराधीन करने वाले हैं। उसका मुख्य जीवन आध्यात्मिक जीवन है। वह अछूता पड़ा है। उसके अभाव में मानव परतंत्रता के पार्श्वों में जकड़ गया है। आध्यात्मिकता मानव को स्वाधीन बनने के लिए प्रेरणा दे रही है। यह प्रेरणा उसे दिन रात प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए उत्तेजित करती है। मानव न जाने कब से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा है, यत्न कर रहा है, अनेक मार्गों की दौड़ लगा चुका है। ज्ञान, कर्म, व्रत, तप, योग आदि अनेक सेनापतियों के सहारे इसने प्रकृति से मोर्चा लिया है, पर अभी स्वतंत्र न हो सका। प्रकृति के कुछ पार्श तो इस मोर्चे से कट गए, पर उसका प्रबलतम पार्श जिस अस्त्र से कटेगा वह आत्मा के इन सेनापतियों के पास है ही नहीं। वह शस्त्र जिसके पास है वही उसका प्रयोग कर सकता है और उसी प्रयोग द्वारा स्वाधीन भी बन सकता है। यह शस्त्र ज्ञान, तप, योग आदि सबसे ऊपर है। यह अहंकार समर्पण का शस्त्र है और यह आत्मा द्वारा ही प्रयुक्त हो सकता है। इसी अहंकार समर्पण से आत्मा परमात्मा के दर्शन करता है। अहंकार समर्पण, शरणागति या प्रपत्ति के बिना भगवान के दर्शन नहीं होते। अंत में जब जीव आत्मसमर्पण द्वारा अपने ही निकट वर्तमान आध्यात्मिकता के केंद्र तथा स्वाधीनता के सूर्य भगवान को देखता है तो उसके दर्शन मात्र से उसके समस्त बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। प्रभु परायणता, भगवत भक्ति उसे स्वाधीन वातावरण में विचरण करने योग्य बना देती है। अतः भक्ति का एक फल स्वाधीनता है। भारतीय ऋषि जीव की स्वाधीन मुक्तावस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्रृणवन श्रोत्रम भवति, स्पर्शयन त्वक् भवति, पश्यन चक्षुर भवति, रसयन रसना भवति, जिघ्रण घ्राणम भवति, मनमानो मनो भवति, बोधयन बुद्धिर भवति। शत का 14। भौतिक शरीर को छोड़कर आध्यात्मिक स्वाधीनता में जीव जैसा चाहता है वैसा ही रूप धारण कर लेता है और अपने 24 प्रकार की शक्तियों से स्वतंत्रता का आनंद भोग करता है। वैदिक स्वर्ग का वर्णन वैदिक भक्ति शीर्षक अध्याय के अंतर्गत है। 2. पवित्रता। आत्मा प्रकृति के संपर्क से मलिन हो गई थी, वह अपने विशुद्ध चेतन पवित्र रूप को छोड़कर मलिन से मलिन होती गई। देव से मानव, मानव से पशु, पशु से पक्षी, शरीर श्रीपादी और वहाँ से भी कृमि कीट आदि में होता हुआ स्थावर योनियों में जाकर जड़ के समान ही बन गई। प्रकृति जड़ है, जड़ का संपर्क जड़त्व को ही जन्म दे सकता है। अतः जीव का जो रूप स्थावर योनियों में दिखाई देता है वह केवल अंतर संज्ञा वाला है। उसके चेतन रूप के चिन्ह अन्य योनियों की भांति बाहर दृष्टिगोचर नहीं होते। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेसी बोस ने जो वृक्षों को रोते और हंसते हुए बताया है वह अज्ञेय बालक के हंसने रोने के भी समान नहीं है। वह केवल उनकी प्राणवत्ता प्रकट करता है, चेतनता नहीं। पौराणिक अनुश्रुति में जीव की 84 लाख योनियां वर्णित हुई है। स्थावरम विंशतेर लक्षम, जलजम नव लक्षकम, कूर्माश्च नव लक्षम च, दश लक्षम च पक्षिणः, त्रिशन लक्षम पशूनाम च, षट लक्षम च वानरा, ततो मनुष्यताम प्राप्य, ततः कर्माणि साधयेत्, एतेषु भ्रमणं कृत्वा द्विजत्वम् उपजायते। बृहद विष्णु पुराण। इस श्लोक में पाठ भेद भी मिलता है जिसके अनुसार स्थावर 30 लाख और पशु 20 लाख योनियों में विभाजित हैं। कूर्म के स्थान पर कृमि पाठ भी मिलता है जो 9 लाख के स्थान पर 11 लाख योनियों वाले हैं। वानर के स्थान पर वा और नर पृथक पृथक करके किसी किसी ने मनुष्य की ही 4 लाख योनियां बताई हैं। अतः परिवर्तित क्रम नीचे लिखे अनुसार है। स्थावर 30 लाख, जलचर 9 लाख, कृमि 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 20 लाख, मनुष्य 4 लाख। इस सूची के अनुसार जलचर से मनुष्य योनि तक 54 लाख योनियां हैं। अर्नेस्ट हैकल ने अपने ग्रंथ द लॉस्ट लिंक में मछली से मनुष्य तक 53,75,000 योनियां मानी हैं। गरुड़ पुराण में उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज 4 भेदों में समस्त योनियों को विभाजित करके प्रत्येक भेद के 21 लाख प्रकार बतलाए हैं। यथा उद्भिजा स्थावरा सर्वे, बीज कांड प्ररोहिण, स्वेदजम दंश मंशकम, यूका मक्षिक मत कुणम, अंडजा पक्षिण सर्पा, नक्रा मत्स्याश्च कच्छपा, पशुश्च मृगाश्चैव, मनुष्याश्च जरायुजा, 21 लक्षाणि प्रत्येकं परिकीर्तिता, एतेषु भ्रमणं कृत्वा द्विजत्वम् उपजायते। डॉक्टर भगवान दास द्वारा उनकी पुस्तक दि साइंस ऑफ रिलीजन द्वितीय संस्करण 1948 के पृष्ठ 46 पर उद्धृत। देव योनि सत्वगुण की योनि है, वहाँ से गिरकर जीव रजोगुण और तमोगुण की घोर कष्टमयी विभत्त एवं मलिन योनियों में केवल प्रकृति से संबद्ध होने के कारण जाता है। नाना प्रकार के पापमय पर्दों से आच्छादित होकर वह अधम मध्यम निकृष्ट कारागारों अपांग प्रांग एति सोधया गृभीतोर मत्यो मर्त्ये नाम सयोनि ताश्वंता विशुचीना व्यंतान्य न्यंचिक्यूर्ण निचिक्यूरण्यम, ऋग्वेद 1:164-38। अमर जीवात्मा प्रकृति द्वारा पकड़ा हुआ मरण धर्मा शरीर के साथ संयुक्त होकर कभी नीची योनियों में जाता है और कभी ऊंची योनियों में। कर्म फल भोग के लिए अनेक लोकों में उसे जाना पड़ता है, पर हम उसे नहीं उसके शरीर को ही देख पाते हैं। वी ईच लीव आवर मेंटल लाइफ इन अ प्रिजन हाउस फ्रॉम विच देयर इज नो एस्केप, इट इज आवर बॉडी। आवर सेंस ऑर्गन्स आर विंडोज थ्रू विच वी कैन लुक आउट एंड एक्वायर नॉलेज, फिजिक्स एंड फिलोसफी Page 6-7 by Sir James Jeans। की यंत्रणाएं झेलता हुआ कुत्सित कर्म विपाक को भोगकर मानव योनि में आता है। मानव योनि के अतिरिक्त अन्य सब भोग योनियां हैं, वहाँ पराधीनता ही पराधीनता है। मानव योनि कर्म और भोग दोनों की योनि है, यहाँ पराधीनता के साथ कर्म करने की स्वतंत्रता भी है। अन्य योनियां एकांत अपवित्र है, परंतु मानव योनि में पवित्रता के दर्शन होने लगते हैं। पवित्रता की माप सत्य है, पशुओं के पास सत्य और असत्य की पहचान करने वाली विकसित बुद्धि ही नहीं है, अतः उनके संबंध में सत्य और असत्य का प्रश्न ही नहीं उठता। मानव विकसित बुद्धि वाला प्राणी है और सत्य एवं असत्य में भेद कर सकता है। जो मानव जितना ही अधिक सत्य के निकट होता जाता है उतना ही अधिक वह पवित्रता की ओर उन्मुख होता है। उसकी बुद्धि और कर्तृत्व शक्ति, ज्ञान और कर्म दोनों ही इस संबंध में उसकी सहायता करते हैं। सत्य का संपर्क उसकी चेतना को स्फुरित कर देता है, इस चेतना के आधार पर उसे सत्य स्वरूप भगवान का बोध होने लगता है। भक्ति मार्ग यहीं आकर ज्ञान और कर्म को बल प्रदान करता है। प्रभु की भक्ति, उसके गुणों का चिंतन, स्मरण और कीर्तन जीव के अंदर पवित्र परमात्मा की समकक्षता में उसके अपने अपवित्र रूप का उद्घाटन कर देते हैं। वह व्यथित हो उठता है, पवित्र प्रभु के आगे कातर क्रंदन करने लगता है, अपनी अपवित्रता को दूर करने का संकल्प करता है और आत्म निवेदन के सहारे सारी मलिनता को धो बहाता है। भक्ति उसे पवित्रता प्रदान करती है। पवमान प्रभु का आश्रय पाकर जीव पवित्र हो जाता है। 3. विश्व बंधुत्व भावना। पवित्रता की प्रदीप्ति जीव में सत्व गुण की स्थिति की सूचक है। सत्व गुण की अवस्था में राग द्वेष का भाव नहीं रहता। राग द्वेष का भाव मेरे तेरे पन को नष्ट कर देता है, जो स्वार्थ परता एवं संकीर्णता का द्योतक है। सत्व की प्रतिष्ठा चित्ती का उद्रेक भी करती है। यह चित्ती व्यापक द्यो तत्व या महाचित्ती से मिलकर एकत्व भाव को उत्पन्न करती है। आत्मा को इस प्रतीति होती हुई भिन्नता में समता के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। संकीर्ण स्वार्थ परता नष्ट होने लगती है और आत्मा सर्वत्र उस महाचित्ती के प्रकाश को अनुभव करने लगता है। समस्त प्राणियों में एक रस रूप से विराजमान परम आत्म तत्व को जानकर वह द्वैत से परे हो जाता है। प्राणी ही क्यों, अचेतन जगत की विविध रूपा दृश्यावली में भी उसे उसी की बाकी छवि दृष्टिगोचर होती है। जेम्स स्टेन ब्रोक अपने ग्रंथ कंस्ट्रक्टिव बेसिस फॉर थियोलॉजी के पृष्ठ 166 पर लिखते हैं, आई एट फर्स्ट रिगार्डेड द नेचुरल वर्ल्ड एज अदर देन माई सेल्फ, डिस्टिंक्ट एंड स्ट्रेंज, but when I have sufficiently awakened, I am able to recognize even in nature and commune with the mind there, expressing itself and know myself in union with the great mind of nature. The goal is the full free life of person whose highest life is the recognition of the divine mind in all things. मैं प्राकृतिक अचेतन जगत को पहले अपने से भिन्न समझता था, परंतु अब जब मैं चैतन्य का पर्याप्त रूप से जागरण अनुभव करने लगा हूँ, मुझे प्रकृति के अंदर वही महान चेतन मस्तिष्क अपने को अभिव्यक्त करता दिखाई देता है और इस रूप में समस्त प्रकृति अचेतन जगत के साथ मैं अपने आप को संयुक्त पाता हूँ। मानव का उच्चतम जीवन यही है कि वह सब में, चर और अचर में, उस दैवी सत्ता का अनुभव करे, विश्व बंधुत्व भावना को जागृत करे। जो कुछ यहाँ उत्पन्न हुआ है और इस बृहद आकाश में जो कुछ अनुत्पन्न कोष के रूप में सुरक्षित है और उत्पन्न हुए को चारों ओर से घेरे हुए है, वह सब उसी की सत्ता से सत्तावान है। सूत्र में मणियों की भांति उसी में ओतप्रोत है, उससे भिन्न यहाँ कुछ है ही नहीं। ऐसा अनुभव आत्मा को निर्भय और सबका संबंधी बना देता है। भक्त भगवान की उपस्थिति को पद पद पर अनुभव करता है। उसका प्रेम भगवान के प्रति होकर सब चराचर के प्रति क्रियाशील हो उठता है। उसे सब अपने आत्मा के ही प्रतीत होने लगते हैं। संपूर्ण विश्व को वह बंधुता के बंधन में बांधकर अपने अंदर समेट लेता है और आत्मा को विशाल बनाकर सब तक पहुंचा देता है। द होल हेवन इज ओपन टू द ईगल्स फ्लाइट एंड टू अ नोबल मैन द होल अर्थ इज हिज फादर लैंड, द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, पेज 131। यही विश्व बंधुत्व की भावना है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्, भर्तृहरि। भगवत भक्ति में निरत प्राणी किसी का नहीं, भगवान का है और इसी हेतु सबका है। वह ब्रह्म के संपर्क में आकर अल्प नहीं रहता, भूमा बन जाता है। उपनिषद के ऋषियों ने इस विशाल महनीय अवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की है। 4. प्रभु प्राप्ति। प्रभु प्राप्ति का अर्थ क्या है? क्या प्रभु किसी दूर देश में बैठा है जहाँ पहुँचकर भक्त उसे प्राप्त कर लेता है, या वह किसी अतीत काल की वस्तु है जो खो गई है और अब भक्त ने खोजकर प्राप्त कर ली है? नहीं, भक्ति मार्ग ऐसा नहीं कहता। दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की खोजों के आधार पर हम पीछे लिख चुके हैं कि प्रभु सर्वव्याप्त है। वे निकट से निकट और दूर से दूर हैं। देश और काल के बंधन उन्हें आबद्ध नहीं कर सकते। इनकी वहाँ गति ही नहीं है। प्रभु प्राप्ति में देश और काल का अनवच्छेद है। प्रभु की प्राप्ति भाव क्षेत्र से संबंध रखती है। प्रभु निकट ही वर्तमान है। वे अंतर्यामी है, सबके अंदर विराजमान है। पर वेल्ले साधक ही उनकी समीपता का अनुभव कर पाते हैं। दधि में घी विद्यमान है, पर बिना दधि मंथन के वह प्रकट नहीं होता। उसी प्रकार प्रभु आत्मा के अंदर विराजमान है, पर बिना साधना अभ्यास रूपी मंथन के वे प्राप्त नहीं होते। भक्ति ही वह अचूक साधन है जो उन्हें प्राप्त करा देता है। ज्ञान आदि प्रभु की झलक दिखा देते हैं, उनका कार्य भी इतना ही है, इससे अधिक नहीं। प्रकाश आने पर अंधकार में छिपी वस्तु अपना दर्शन ही तो देती है, पर उसे प्राप्त करने के लिए तो मुझे उस तक पहुँचना होता है और हाथ बढ़ाने पड़ते हैं। इसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश में प्रभु की प्रतीति होने लगती है और भक्ति द्वारा साधक उन्हें प्राप्त कर लेता है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन अपने ग्रंथ द फिलोसफी ऑफ द उपनिषद के पृष्ठ 86 पर एक उदाहरण देते हैं। दाउ द इन इंडिविजुअल इज lit with the divine spark, he is not wholly divine. His divinity is not an actuality, but a part of God aspiring to be the whole. As he is dust and deity. God and root crossed, it is the task of the moral life to eliminate the non-divine element, not by destroying it, but by suffusing it with the divine spirit. Quoted from International Journal of Ethics, 1914, page 169. इसी विषय से संबद्ध उन्होंने कांट के क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन से के पृष्ठ 87 पर एक उदाहरण और दिया है, जिसके अनुसार बुद्धिवाद, तर्क या ज्ञान मानव को ऊंचा नहीं उठा पाते, उसके अंदर दिव्यता का प्रवेश नहीं करा सकते. मैन इज नॉट इन द लीस्ट एलिवेटेड अबव मेयर एनिमलिज्म बाय द पोजेशन ऑफ रीजन. ज्ञान साधक के अंदर दैवी स्फुलिंग को ज्योतित कर देगा, पर उसे दिव्य नहीं बना सकेगा. साधक स्वयं दिव्यता का एक कण है, जो पूर्ण बनने के लिए लालायित हो रहा है. अपने स्वरूप में तो वह अमर्त्य मर्त्येना संयोनि ही है. मर्त्य भी है और अमर्त्य भी, पार्थिव भी है और दिव्य भी, धूल भी है और देवता भी. उसे मर्त्य पार्थिव अदैवी भाग को अपने से पृथक करना है, उसे नष्ट करके नहीं, प्रत्युत उसे दिव्यता से ओतप्रोत करके. यह कार्य भक्ति भावना का है. लुई रिचर्ड फर्नेल अपने ग्रंथ एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड के पृष्ठ 245 पर लिखते हैं, भक्ति भाव से की गई प्रार्थना आध्यात्मिक दिव्य शक्ति को क्रियाशील कर देती है, जो उसके अभाव में सोई पड़ी थी, और वह वस्तुतः अपना प्रभाव डालती है. इन प्रेयर स्पिरिचुअल एनर्जी विच अदरवाइज वुड स्लम्बर डस बिकम एक्टिव एंड स्पिरिचुअल वर्क ऑफ सम काइंड इज इफेक्टेड रियली. भगवत भक्ति साधक को दिव्यता के स्रोत से संयुक्त कर देती है, इसीलिए इसे भक्ति योग भी कहते हैं. भक्ति के अंग भक्त पावन कारणी शक्ति रखते हैं, और भक्त को परम पवित्र प्रभु के संपर्क में ले जाकर बिठा देते हैं. पवमान प्रभु इस पवित्र भक्ति को अपने दिव्य धाराओं से ऐसा आर्द्र, ऐसा सर्वभोर कर देते हैं कि उसका अंग अंग दिव्यता से दमकने लगता है. अंश अंशी में, तरंग समुद्र में, चिंगारी अग्नि में पड़कर तदाकार हो जाती है. दार्शनिक दृष्टि से जीव का प्रभु में विलय नहीं, प्रत्युत प्रभु प्राप्ति के द्वारा जीव का अपने स्वरूप को ही प्राप्त करना है. प्रकृति ने उसे प्रभु से दूर कर दिया था. भक्ति ने प्रकृति के पाशों को छिन्न भिन्न करके जीव को असंग और अनावृत करके पुनः प्रभु से मिला दिया. जीव की प्रकृति दिव्य थी, प्रपंच में पड़कर वह अदिव्य ही नहीं, जड़त्व तक पहुँच गयी. भक्ति ने उसे फिर उसके दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया और परम दिव्य के साथ जोड़ दिया. प्रभु प्राप्ति का यही सात्विक रूप है. प्रभु प्राप्ति को परम गति, अति मृत्यु, मुक्ति, विलय, मोक्ष, स्वरूप अवस्थान, अपवर्ग, अमृत अवस्था, पुरुषोत्तम प्रवेश, परम धाम और निर्वाण भी कहते हैं. इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें लेकर दार्शनिकों ने प्रभु प्राप्ति के संबंध में भयंकर मतभेद खड़ा किया है. कुछ आचार्य प्रभु प्राप्ति को परमात्मा में आत्मा का विलय हो जाना मानते हैं, और कुछ उसके विपरीत प्रभु प्राप्ति को परमात्मा के साथ जीव का सख्य भाव हो प्राप्त हो जाना कहते हैं. अतः इस विषय पर भी विचार कर लेना चाहिए. बौद्धों का निर्वाण आत्म तत्व से शून्य है. विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप, इन पांच स्कंधों का दीपक जब तक तेल और बत्ती के समान राग और वासना से संयुक्त है, तभी तक प्रज्वलित है. जब बुझ गया तो शून्य ही शून्य है. रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश का ही नाम मुक्ति है, ऐसा बौद्ध मानते हैं. कोई वस्तु थी, वह समाप्त हो गई, अब नहीं है, ऐसा मत आज के वैज्ञानिक युग में मान्य नहीं हो सकता. वैज्ञानिक खोज के अनुसार वस्तुओं के नाश का तात्पर्य रूप परिवर्तन है, उनका अभाव नहीं. भाव का अभाव हो जाना न तो तर्क से ही सिद्ध हो सकता है, न वैज्ञानिक प्रयोग पद्धति से. दीपक के बुझ जाने का अभाव भी शून्यता या अभाव नहीं है. उसके तेल और बत्ती रूप परिवर्तन द्वारा सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में आकाश में विद्यमान रहते हैं. शून्यवाद में संज्ञान शून्यता की प्रधानता है, और इसी हेतु बौद्ध विज्ञानी देवों से संज्ञान शून्य देवों को उच्च स्तर का मानते हैं, और जो न किसी वेदना का अनुभव करते हैं, न अपने आप का ही उन्हें कोई बोध रहता है. निर्गुण एवं कूटस्थ ब्रह्म भी इसी प्रकार का माना गया है. वास्तविक धर्म के साथ ऐसे देवों या ब्रह्म का कोई संबंध नहीं हो सकता. अतः बौद्धों का निर्वाण या शून्यवाद जीवन के मूल्य की दृष्टि से सार्थक नहीं कहा जा सकता. आचार्य शंकर का अद्वैतवाद भी मुक्ति की गुत्थी को नहीं सुलझा पाता. उनका अनिर्वचनीय मायावाद ब्रह्म को ही बंधन में डालता है और उसी को मुक्त करता है, और इस प्रकार के समग्र प्रपंच को प्रतिभाषित सत्ता के अंतर्गत मानकर मिथ्या कह देता है. जब सब मिथ्या है तो मुक्ति भी मिथ्या है. अतः जीवन के मूल्य की दृष्टि से इस मत का भी कोई मूल्य नहीं है. जो आचार्य मुक्ति के समय ईश्वर में जीव का विलय हो जाना मानते हैं, वे यदि ऐसा कहें कि जीव का भावात्मक अस्तित्व मुक्ति में नहीं रहता, तो उनका यह मत ग्राह्य नहीं हो सकता. जीव जब अपना अस्तित्व ही खो देगा, तो बंधनों से छूटने और आनंद के उपभोग करने का अर्थ ही क्या होगा. जो प्रकृति के पार्श्व में आबद्ध था वह एक सत्ता है, जो मुक्त हुआ वह भी एक सत्ता है, मुक्त होने के पश्चात जो प्रभु को प्राप्त करता है वह भी एक सत्ता है। फिर जीव का विलय कहाँ, विनाश कहाँ? आचार्य वल्लभ ने इसी हेतु मुक्त हुए शुद्ध पुष्ट जीवों को पुरुषोत्तम में प्रवेश करा के भगवान से भिन्न नहीं माना है और हरि लीला में भाग लेने वाले मुक्त जीवों को ब्रह्म से पृथक अस्तित्व वाला स्वीकार किया है। ब्रह्म सूत्र 3:30 के अनुभाष्य में आचार्य वल्लभ लिखते हैं, स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप तदुपलब्धे स्वाधीनत्वेन तत्प्राप्ते रित्यर्थः यद्यपि पुरुषोत्तमे प्रवेशे तदानन्दानुभवो भवति तथापि न प्रभो तदधीनत्वं लीलायां सुहृत्त्वेन प्रभु निकटे स्थितः उक्ता भवति। जीव का प्रभु प्राप्ति में स्वतंत्र पुरुषार्थ है, स्वाधीन भाव से ही बहुत से प्राप्त करता है। यद्यपि पुरुषोत्तम में प्रवेश जीव को भगवान के आनंद का अनुभव कराता है, परंतु वह भगवान के अधीन नहीं होता। लीला में प्रभु के निकट जीव की स्थिति सखा भाव की होती है। ऋग्वेद ने जीव को ईश्वर का सयुजा और सखा कहा है। प्रकृति रूपी वृक्ष के फलों का स्वाद उसके इस रूप का तिरुभाव कर देता है। वह ईश्वर से पृथक हो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के आवरणों से आच्छादित हो जाता है। इन तीन गुणों से पृथक होकर निस्त्रैगुण बनाना ही उसका लक्ष्य है। भगवत भक्ति के साधनों द्वारा वह अपने इस लक्ष्य में कृतकार्य होता है और प्रभु के साथ पुनः अपने सयुजा और सखा रूप को प्राप्त करता है। अतः प्रभु में जीव का विलय नहीं होता, प्रत्युत उसे सखा भाव की प्राप्ति होती है। इसे जीव का सर्वश्रेष्ठ विकास अथवा अपने रूप में अवस्थान कहा जा सकता है। फ्रेंड्स वर्फल अपने ग्रंथ बिटवीन हेवन एंड अर्थ के पृष्ठ 116 पर लिखते हैं, इन रिलीजियस एक्टेसी डेथ इज नॉट ओनली रिमोट बट इज इनकॉन्सिक्वेंटल, देयर इज नो डेथ एंड द ह्यूमन आई इज नॉट ऑब्लिटेटेड बट इज सब्लिमेटेड रिफाइंड और एक्साल्टेड। भगवत भक्ति प्रेम परा है। यदि प्रेम की दृष्टि से विचार किया जाए तो भी प्रिय और प्रेमी का मिलन होता है, एक का दूसरे में विलय नहीं है। इमैनुअल स्वीडनबर्ग अपने ग्रंथ द डिवाइन लव एंड विजडम के पृष्ठ 19 पर लिखते हैं, द वेरी नेचर ऑफ लव इज टू बी लव्ड बाय अदर्स फॉर दस अ यूनियन इज अफेक्टेड, द एसेंस ऑफ ऑल लव कंसिस्ट इन यूनियन, हेंस इट इज प्लान दैट द डिवाइन लव कैन नॉट डू प्लेन दैट द डिवाइन लव कैन नॉट डू अदरवाइज then have its being and manifestation in others whom it loves and by whom it may be loved। प्रेम का स्वभाव ही प्रेम किया जाना है, जिसमें प्रिय और प्रेमी दो का अस्तित्व है। प्रेम द्वारा वे दोनों संयुक्त होते हैं। संपूर्ण प्रेम का सार दो सत्ताओं के मिलन में है। अतः यह स्पष्ट है कि दैवी प्रेम में भी यही सिद्धांत कार्य करता है। प्रेमी प्रभु जीवों से प्रेम करता है तो जीवों में उसकी अभिव्यक्ति होने लगती है और जीव उससे प्रेम करते हैं तो उसकी सत्ता से प्रभावित होते हैं। यह है एक का दूसरे पर प्रभाव, पर जीव प्रभु के इस प्रभाव को ग्रहण करता हुआ भी प्रभु को नहीं हो जाता, वह उसका समान धर्मा सखा बन जाता है। भगवत भक्ति के इस प्रेम रूप द्वारा जीव का प्रभु में विलय सिद्ध नहीं होता, उसका पृथक अस्तित्व बना रहता है। अपवर्ग का अर्थ है वर्ग से हटकर एकांतिक अवस्था प्राप्त करना। एकांत एक ही स्थान पर है, वह स्थान है ब्रह्म। ब्रह्म को प्राप्त कर लेना ही एकांतिक होना है। ब्रह्म भाव के अतिरिक्त अन्य सभी भाव दशाएं वर्ग वाली हैं। वर्ग वाली दशाएं राग द्वेषमयी होने के कारण दुखदायिनी है। अतः न्याय दर्शन सूत्र 1:1-22 अद्यंत्य मोक्षो अपवर्ग में दुख से सर्वथा छूट जाने को अपवर्ग कहा गया है। सांख्य 1:1 में भी मानव के पुरुषार्थ का अंतिम उद्देश्य त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति माना गया है। स्वर्ग का अर्थ है आनंद की प्राप्ति। आनंद को प्राप्त करने वाला जब तक न हो तब तक आनंद की प्राप्ति का अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो सकता। जीव को यह आनंद प्रभु से प्राप्त होता है। प्रभु आनंद धाम है। जीव के पास यह आनंद नहीं था, भक्ति के अभ्यास द्वारा यह आनंद उसे प्रभु से प्राप्त हुआ। अतः जीव उसका उपभोक्ता है। उपभोक्ता की पृथक सत्ता होनी ही चाहिए। छांदोग्य उपनिषदकार ने इसी हेतु जीव की मुक्तावस्था या प्रभु प्राप्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है, स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मन सैतान कामान पश्यन् रमते, य एते ब्रह्मलोके तम वा एतम देवा आत्मान उपासते तस्मान तेषां सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामास सर्वांश लोकानाप्नोति सर्वांश कामान यः तमात्मानम् अनुविद्य विजानीति। छांदोग्य प्रथम 8 खंड 12 संख्या 5-6। प्रभु को प्राप्त कर जीव मोक्ष की दशा में दिव्य नेत्र और मन द्वारा कामों को देखता हुआ रमण करता है। देवता को प्राप्त जो देव रूप जीव परमात्मा की उपासना द्वारा इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, वे सब लोकों और सब कामों को प्राप्त कर लेते हैं। उपनिषद के इस स्थल पर भी जीव को मुक्ति दशा में दृष्टा का पश्यन रूप दिया गया है। बंधन की दशा में उसका यह रूप लुप्त हो गया था और इसके स्थान पर आस्वाद भोग के रूप में प्रधानता प्राप्त कर ली थी। प्रभु का स्थान, प्रभु का रूप स्वभाव से ही आस्वाद भोक्ता का नहीं दृष्टा का है। अनशनन अभिचाक शीति, ऋग्वेद 1:164-20। जीव को यह रूप प्राप्त करना पड़ा और परिणामतः प्रभु के समान रूप वाला बनकर वह उसका सखा हो सका। अति मृत्यु का अर्थ मृत्यु का अतिक्रमण कर जाना है। मोक्ष के संबंध में विविध आचार्यों के मत नीचे उद्धृत किए जाते हैं। नवा नामात्म विशेष गुणा नामत्यंतोच्छेद मोक्ष, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार आत्मनो विशेष गुणः, वैशेषिक सूत्र पर श्रीधर की टीका। नित्य सुख अभिव्यक्ति इति मीमांसकाः, स अहम् इति प्रत्यभिज्ञा विषयः, स आत्मा अहम् प्रत्ययेन एव वेद्यः, तस्य ज्ञानं मोक्षः। वेदांत प्रपंच विलयो मोक्ष इति शंकरा, त्रेधा हि प्रपंच पुरुषं बध्नाति भोगायतनं शरीरं भोग साधनानि इन्द्रियाणि भोग्यः शब्दाद्यो विषयः तदस्य त्रिविधस्य बंधस्य आत्यंतिको विलयः मोक्ष इति अहम् अर्थस्यैव ज्ञातृतया सिद्ध्यतः प्रत्यगात्म तत्त्वं स च प्रत्यगात्मा मुक्तो अपि अहम् इत्येव प्रकाशते, सह सर्वो अहम् इत्येव प्रकाशते, अहम् इत्येव आत्मनः स्वरूपं मोक्ष दशायाम् अहम् अर्थो अनुवर्तते। रामानुज श्री भाष्य। ब्रह्म प्राप्ति मोक्षः, ब्रह्मणः गुण संक्रांतिः जीवे, अपय दीक्षित, नियोग सिद्धिः, विहित धर्माचरणम्, निषिद्ध अधर्म परिहारश्च मोक्षः। प्रभाकर। जीव प्रकृति के संपर्क से नाना प्रकार की योनियों में जाता है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। इसी को जन्म मरण का या आवागमन का चक्र कहते हैं। जीव का वास्तव में न जन्म हुआ है और न उसका मरण ही होता है। एक योनि से दूसरी योनि में आविर्भूत होने और प्रथम योनि को छोड़ने का नाम ही आवागमन है। इन दोनों अवसरों पर जीव को असह्य कष्ट सहने पड़ते हैं। योग दर्शन में वर्णित क्लेशों में अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का कष्ट सबसे भयंकर माना गया है। अनेक साधनों से संपन्न होकर जीव जब भगवत भक्ति द्वारा प्रभु को प्राप्त कर लेता है तो मृत्यु के इस अपार पारावार को अतिक्रांत कर जाता है। मृत्यु को पार करके वह अमृत स्वरूप बनता है। प्रभु प्रभाव से ही अमृत स्वरूप है, अतः इस दृष्टि से भी जीव प्रभु का सखा ही बनता है। जीव मुक्ति की अवस्था में देश और काल की सीमाओं का उल्लंघन कर जाता है। देश और काल से ऊपर चित्ती की अवस्था है, यही देवत्व है। प्रभु सदैव देवत्व में रहते हैं। यह देवत्व प्रेम और ज्ञान की दशा है। जब जीव प्रेम और ज्ञान की ओर प्रयाण करता है तो वह प्रभु के निकट आ जाता है। प्रभु स्वर्ग में है, इस उस उक्ति का भाव भी यही है। स्वर्ग स्थान विशेष न होकर चित्ती की एक ऊर्ध्व अवस्था है। मुक्त जीव प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं या उसमें निवास करते हैं, इसे भी इसी भाव दशा में समझना चाहिए। मुक्त जीव प्रभु से प्रेम करते हैं या प्रभु देवों से प्रेम करते हैं, अतः दोनों संयुक्त रहते हैं। भाव के इस विशिष्ट दशा के आधार पर भी जीव के अस्तित्व का खंडन नहीं होता। दोनों का, जीव और प्रभु का साथ साथ रहना ही सिद्ध होता है। यहाँ भी दोनों का सखा भाव ही प्रधान है। कौन प्रिय है और कौन प्रेमी, नारद ने भक्ति को परम प्रेम रूपा कहा है। शांडिल्य ने भी भक्ति को ईश्वर में पराकाष्ठा की अनुरक्ति का नाम दिया है। प्रभु के प्रति भक्त का यह अनुराग या प्रेम प्रभु को भी प्रेम स्वरूप सिद्ध करता है। जैसा हम पीछे लिख चुके हैं, प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है जिससे अन्य उसकी ओर आकर्षित हो, दूसरे उससे प्रेम करें। आचार्य वल्लभ के शब्दों में प्रेम ही वह सूत्र है जो दो पृथक पृथक पड़े हुए तत्वों अथवा तत्वों को संयुक्त कर देता है। भागवत दशम स्कंद उत्तरार्ध 11:25 के सुबोधिनी भाष्य में आचार्य वल्लभ लिखते हैं, प्रेमैव बन्धनम् इति भगवत प्रेमणैव साबद्धा तिष्ठति। नारद ने सूत्र संख्या 51 में प्रेम के स्वरूप को अनिर्वचनीय कहा है। मूक प्राणी मिठाई खाकर जैसे उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार प्रेमी प्रेम के आस्वाद का अनुभव करके उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। यह प्रेम सबको प्राप्त भी नहीं होता, किसी विरले भगवत भक्त के हृदय में ही इसका प्रकाश होता है। प्रेम भगवान का ही रूप है या भगवान प्रेम स्वरूप है, ऐसा कथन यही सिद्ध करता है कि प्रेम और भगवान सहिता और स्रोत एक ही हैं। भगवान प्रेम के स्वरूप है, प्रेम उन्हीं में केंद्रित है। अन्यत्र जहाँ कहीं प्रेम का रूप उपलब्ध होता है वह उन्हीं से आया है। और जैसे समुद्र का जल वाष्प बनकर मेघ के रूप में परिणत होता है, फिर वर्षा के रूप में झरने, नद, नदी आदि का रूप धारण कर पुनः समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार प्रेम स्रोत भगवान से प्रेम की धाराएं निकलकर भक्तों की हृदय भूमि को सिंचित करती हैं और पुनः प्रेम स्रोत स्वरूप प्रभु की ओर प्रवणायित होकर उसी में केंद्रस्थ हो जाती है, समा जाती है। जहाँ प्रेम है वही ज्ञान है, वही श्रेष्ठता है और वही सत्य है। इमैनुअल स्वीडनबर्ग के शब्दों में, ऑल गुड कम्स फ्रॉम लव एंड ऑल ट्रुथ कम्स फ्रॉम विजडम, गॉड इज ऑल लव एंड ऑल विजडम, द डिवाइन लव एंड विजडम, पेज 35। समस्त उत्तमता का स्रोत प्रेम है और समस्त सत्य का स्रोत ज्ञान है। प्रभु समस्त प्रेम और समस्त ज्ञान है। प्रभु का यह प्रेम जिस योग्य पात्र को प्राप्त हो जाता है, उसके विचार, उच्चार और आचार स्फूर्त, स्निग्ध और सजीव होते हैं। परंतु जहाँ इसकी प्रदीप्ति न पहुँची, वहाँ विचार बासी, वाणी रूखी और कर्म निर्जीव से लगते हैं। प्रेम किसी वस्तु को चमका देता है, उसके अभाव में वह वस्तु निस्सत्व हो जाती है। अतः प्रेम से विमुख होना प्रभु से विमुख होना है और प्रभु से विमुख होना ही मरण है। प्रेम में लोलुपता या कामुकता नहीं होती। काम भावना जब विस्तृत होकर स्वयं अपने को समाप्त कर देती है, तभी उदात्त एवं आह्लादकारी प्रेम पुष्प का विकास होता है। इट इज नॉट अंटिल लस्ट इज एक्सपेंडेड एंड Eradicated that is developed into the equity and ethereal flower of love. Psychology of Sex by Havelock Ellis, Volume 5, Page 133. सूर्य की उष्णता से प्रेम भाव का कुछ परिचय प्राप्त हो सकता है। सूर्य की उष्णता समस्त पार्थिव वनस्पतियों की जान है। वसंत में बढ़ती है तो पृथ्वी से पौधे उगते हैं तथा पत्तों, फूलों और फलों से अलंकृत होते हैं। यही उनका जीवन है। हेमंत में सूर्य की उष्णता कम होती है तो जीवन के ये चिन्ह भी मिट जाते हैं। प्रेम और उष्णता दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं, अतएव प्रेम भी उष्ण है। प्रेम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी शरीर में उष्मा उत्पन्न करता है, जिससे नाड़ी संस्थान में शुद्धता आती है और उसका प्रभाव शरीर के समस्त अवयवों पर पड़ता है। श्री हरिराज जी ने भक्ति दैविध्य निरूपण श्लोक 2 और 3 में इसी हेतु पुष्टि मार्ग ये भक्ति को उष्ण भक्ति का नाम दिया है, जिसका लक्ष्य गोपियों के भाव का अनुसरण करते हुए प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर मस्त रहना और भगवान के आधारामृत का सेवन करना है। आध्यात्मिक उष्णता का अनुभव जीवन में उस समय होता है जब कोई धर्मोपदेष्टा आवेश में आकर बोलता है। ऐसे वाग्मियों की वाणी अंतर्यामी भगवान द्वारा प्रेरणा पाती है, अतएव उसमें उष्णता के साथ प्रकाश भी होता है। उष्णता त्याग तथा प्रेम भाव में और प्रकाश श्रद्धा एवं ज्ञान में प्रकट होता है। केवल प्रभु ही साक्षात प्रेम है, अतः वही साक्षात जीवन भी है। अन्य सबको जीवन वहीं से मिलता है। जब जीवन वहाँ से मिलता है तो रक्षण भी स्वभावतः वहीं से प्राप्त होता है। प्रभु की रक्षण शक्तियाँ भी उसके स्वरूप की भांति अनंत हैं। ऋग्वेद के शब्दों में नास्य छियंत ऊतयः 6:43 प्रभु की रक्षण शक्तियाँ कभी क्षीण नहीं होती। प्रभु का अंत नहीं है, अतः उसकी शक्तियों का भी अंत नहीं है। ऊपर प्रेम के स्वरूप की जो व्याख्या की गई है, उससे प्रभु का प्रेम रूप प्रकट होता है, अतः वह प्रिय है। प्रेम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जीव भक्ति भावना से प्रभु की ओर आकर्षित होता है, अतः वह प्रेमी है। जीव अनेक हैं, प्रभु एक हैं, अतः प्रेमी अनेक है और उन सबके प्रेम का केंद्र एक प्रभु है। भारतीय प्रेम पद्धति अथवा प्रेम मार्गीय भक्ति में प्रेम के इसी रूप की प्रतिष्ठा हुई है। वेद ने अनेक स्थानों पर प्रभु को अंग अर्थात प्रिय कहा है। संसार में यह प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त होता है। मित्र मित्र में प्रेम होता है, पति पत्नी में प्रेम होता है, राजा और प्रजा में प्रेम की भावना इस समय दिखलाई नहीं देती, पर आर्य संस्कृति ने इसके भी अनेक उदाहरण विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आर्य राजाओं ने अपना मुख्य धर्म प्रजा अनुरंजन ही समझा है और प्रजा ने भी राजभक्ति से प्रभावित हो राजा के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ समर्पित कर दिया है। प्रजा का अर्थ ही संस्कृत में संतति, सुत या पुत्र है। जिस प्रकार माता पिता प्रेम भाव से प्रेरित हो अपनी संतति का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करता है, उसकी हित चिंतना में सदैव निरत रहता है। कर्तव्य पालन की यह निष्ठा प्रेम से ही संभव होती है। वेद में तथा परवर्ती संस्कृत साहित्य के स्तोत्रों में प्रभु को प्रेम के इन सभी रूपों में प्रकट किया गया है और भक्ति क्षेत्र में प्रेम संबंध की यह प्रणाली मध्यकालीन भक्ति साहित्य में होती हुई आज तक चली आई है। फिर भी प्रेम भाव की जितनी व्यापकता एवं तीव्रता वात्सल्य के रूप में प्रकट हुई है, उतनी अन्य किसी रूप में नहीं। माता का जो प्रेम अपनी कोख से उत्पन्न हुए बच्चे के लिए होता है, वह पति के लिए भी नहीं। पति प्रेम में कुछ स्वार्थ भावना भी निहित रहती है, पर पुत्र प्रेम स्वाभाविक होता है, उसमें स्वार्थ की गंध भी नहीं होती है। पिता भी माता से बढ़कर प्रेम नहीं कर सकता। पशु जगत में पिता को अपनी संतान का और संतान को अपने पिता का पता भी नहीं रहता, पर माता अपने बच्चे को देखते ही रंभाने लगती है और बच्चा भी अपनी माँ की ओर विशेष रूप से आकर्षित होता है। सहस्रों गौओं के बीच में भी गोवत्स अपनी माँ को पहचान लेता है और सद्या प्रसूता गाय या भैंस भी अपने बछड़े या पड़वे को देखकर विविध हुंकारों तथा शेर हिलाने की चेष्टाओं द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करती है। कवियों ने प्रेम की तीव्रता प्रदर्शित करने के लिए गोवत्स प्रेम के इस उपमान का अनेक बार उल्लेख किया है। वेद में भी यह उपमान कई स्थानों पर आया है। सामवेद उत्तरार्चिक मंत्र 1193 में ऋषि ने वत्सम न मातरह तथा ऋग्वेद 10:9-2 में उषति रिव मातरह और ऋग्वेद 9:104-1 में वत्सम न जातम रिहन्ति मातरह कहकर प्रभु को बच्चा और साधकों को माताओं का रूप दिया है। जीव और ईश्वर, भक्त और भगवान के प्रगाढ़ प्रेम को प्रकट करने के लिए ऐसा उपमान विश्व के अन्य किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं होता। इससे अधिक आकर्षक उपमान की तो बात ही क्या है। लोक में पति पत्नी प्रेम भी अद्भुत आकर्षण रखता है। यहाँ पति प्रिय है और पत्नी प्रेमिका। पति भी पत्नी से प्रेम करता है, पर वह पत्नी के प्रेम की समता नहीं कर सकता। उसका प्रेम अन्य प्रणालियों, परिवार के अतिरिक्त लोक के अन्य क्षेत्रों में भी अपने प्रवाह का मार्ग पा लेता है, पर पत्नी का प्रेम उसके पति या पुत्र और पुत्र भी उसके अपने और पति के ही अपर रूप में है कि अतिरिक्त और कहीं नहीं जाता। लौकिक दाम्पत्य प्रेम पर जो एक पति और कई पत्नियों की संभावना का विधान हमारे यहाँ कार्य कर रहा है, वह भी अध्यात्म क्षेत्र की भक्ति भावना से प्रभावित है। अध्यात्म क्षेत्र में प्रभु एक और भक्त अनेक हैं। इसी प्रकार गृहस्थ धर्म में पति एक है पर पत्नियां कई हो सकती हैं। भगवत भक्ति में दाम्पत्य भावना ने भी भाग लिया है। ऋग्वेद 1:73-3 में अनवद्या पति जुष्टेव नारी, 10:71-4 में जायेव पत्ते उषति सुवासः तथा 10:40-2 में मर्यम न योषा कृणुते सधस्थ आ मंत्र पद इसी भावना की ओर संकेत करते हैं। लोक मर्यादा के अंतर्गत पत्नी जब पति के साथ होती है तो वहाँ अन्य किसी को भी नहीं आने देती। पत्नी पति के और पति पत्नी के सदस्य अर्थात आमने सामने एक दूसरे के सम्मुख रहते हैं। भक्ति की भूमिका में भी जब भक्त भगवान के सदस्य होता है उस समय कोई भी वासना उसके समीप नहीं रहती। इसी कारण हमने पीछे इस अवस्था को एकांतिक अवस्था कहा है। इस अवस्था को प्राप्त भक्त प्रभु से क्षण भर के लिए भी पृथक होना नहीं चाहता। यही अवस्था मधुमती भूमिका कहलाती है। अर्नेस्ट ई अनविन अपने ग्रंथ रिलीजन एंड बायोलॉजी के पृष्ठ 151 पर लिखते हैं, गॉड इज नियरेस्ट टू अस, ही इज द ग्राउंड, ही इज द सब्सटेंस, ही इज द टीचर, ही इज द एंड, ही इज द मीड फॉर विच एवरी सोल ट्रेवलिज। मधुमती भूमिका में उपलब्ध प्रभु का सदस्यता रूप मधु के लिए प्रत्येक भक्त लालायित रहता है। जीव तो प्रभु की ओर चलता ही है। कवियों की कल्पना दृष्टि ने प्रकृति की विविध रूपावलियों को भी उधर ही प्रयाण करते अनुभव किया है। अथर्ववेद 10:7-37 का ऋषि कहता है, कथम वातो नेलयति, कथम न रमते मनः, किमापः सत्यं प्रेप्सन्ति, नेलयन्ति कदाचन। यह वायु क्यों चला जा रहा है, ठहर क्यों नहीं जाता, ये जल किसकी कामना में बहे चले जा रहे हैं, ये स्थिर क्यों नहीं हो जाते, इनका मन यही रमण क्यों नहीं करता। प्रतीत होता है ये सब उस सत्य स्वरूप प्रभु की खोज में लगे हुए हैं। उनको बिना प्राप्त किए इन्हें चैन कहाँ, इनकी गति का अंत तो उसी अनंत में होगा। कवि को पृथ्वी का सूर्य के चतुर्दिक भ्रमण व्यर्थ नहीं जान पड़ता। आकाश में तारे किसी विशिष्ट उद्देश्य से उसे चमकते प्रतीत होते हैं। यह उद्देश्य प्रभु की सेवा है, भगवत भक्ति है। पुष्पों के विकसित होने और चिड़ियों के चहचहाने में उसे प्रभु के गुणों का कीर्तन प्रतीत होता है। प्रकृति की यह अनेक रूपता भी मानव प्रयाण करती हुई उस एक प्रभु के साथ एक हो जाना चाहती है। प्रकृति पत्नी है, प्रभु पति है। प्राचीन साहित्य में भक्ति भावना भक्त को प्रेमी और भगवान को प्रिय मानकर ही अभिव्यक्त हुई है, परंतु हमारे परवर्ती साहित्य में तथा ईरान के सूफी साहित्य में इसका रूप परिवर्तित हो गया है। इस रूप में प्रभु प्रेमी तथा भक्त प्रिय के रूप में दिखाई देता है। प्रभु स्त्री है तो भक्त पुरुष, एक माशूक है तो दूसरा आशिक। गॉड हिमसेल्फ इज लव एंड द कॉज ऑफ द क्रिएशन इज लव। थ्रू द फैकल्टी ऑफ लव द पार्ट्स इन द यूनिवर्स आर यूनाइटेड टू देयर होल टू बी एब्सॉर्ब्ड इन द सुप्रीम फाउंटेन ऑफ लव। which is the supreme beauty and supreme good. The imperfects are named lovers who seek the help of perfects called beloved. Shastri, Outline of Islamic Culture, page 414. वात्सल्य भाव की दृष्टि से कहना चाहे तो प्रभु माँ है और भक्त बच्चा। वेद ने भी प्रभु को माँ कहा है, जैसे त्वम ही नो पिता वसो त्वम माता, ऋग्वेद 8:6-7:2। पर वहाँ प्रभु का मात्र रूप श्रद्धा और आदर का भाजन है। हम यहाँ भक्ति क्षेत्र के प्रेम भाव की विवेचना कर रहे हैं, जिसमें प्रभु माँ के रूप में अपने पुत्र भक्तों से प्रेम करता है। भक्त प्रभु से मिलने का प्रयत्न करता है, पर जब वह प्रयत्न करके थक जाता है और प्रयत्न में कृत कार्य नहीं हो पाता तो प्रभु को पुकारने लगता है। प्रेमी प्रभु भक्त की पुकार को सुनते ही उसके पास आ जाता है, जैसे माँ अपने बच्चे के रुदन को सुनते ही उसके पास आ जाती है। भक्त को फिर प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसमें सामर्थ्य ही कितना है। अल्प शक्ति जीव उस सर्वशक्तिमान की शरण में जाकर ही समर्थ बन पाता है। प्रभु स्वयं प्रेम स्रोत स्वरूप है। जैसे बिल्ली अपने बच्चों की चिंता में म्याऊं म्याऊं करते हुए बच्चों के पास स्वतः पहुंच जाती है, उसी प्रकार प्रभु भी शरणागत भक्त को अपनाने के लिए स्वयं उसके पास पहुंचते हैं, भक्त के पास प्रकट हो जाते हैं, प्रकाशित हो उठते हैं। भक्त के लिए प्रभु की ओर उन्मुख हो जाना, हृदय में प्रभु प्राप्ति की प्रबल पिपासा का जागृत हो जाना भर आवश्यक है। भक्त प्रेम की इस दशा में अपने योग और क्षेम की ओर से एकदम निश्चिंत रहता है। बच्चे की भांति उसके योग और क्षेम की चिंता माँ को है, भगवान को है। वह किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी क्यों करे जब उसकी माँ विद्यमान है, और इच्छा भी क्यों करे जब उसकी आवश्यकताओं और अभावों को समझने और पूर्ण करने के लिए प्रभु उपस्थित हैं। भक्ति पथ के पथिक की यह बहुत ऊंची अवस्था है। गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोकों में प्रभु के ऐसे ही भक्त के लक्षण वर्णित हुए हैं, जिनमें सर्वारंभ परित्यागी, अनपेक्ष, अनिकेत, संतुष्ट, शुभाशुभ, परित्यागी आदि गुणों का उल्लेख है। सामान्य अवस्था में तो इच्छा और प्रयत्न के बिना काम ही नहीं चलता। ऋग्वेद 10:125-5 में वाग्रिम्भणी देवी का कथन, यम कामये तम तमुग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम, मैं जिसे चाहती हूँ उसे ब्रह्मा, ऋषि, मेधावी और तेजस्वी बना देती हूँ। वाग देवी प्रभु की ही शक्ति है। इस शक्ति के रूप में प्रभु ही जिसे चाहते हैं, जिसे प्रेम करते हैं, उसे सब कुछ बना सकते हैं, शक्ति संपन्न कर सकते हैं। कठोपनिषद 2:23 में भी इसी तथ्य का उल्लेख है। इसके शब्द आत्मा विवृणते तनुम स्वाम दाम्पत्य क्षेत्र में भी घट सकते हैं। भक्त की अशक्ति और प्रभु के प्रेमी रूप का उल्लेख एक उर्दू के कवि ने नीचे लिखी पंक्तियों में किया है। श्वाये मह खुद बेताब है जज्बे मोहब्बत से, हकीकत वरना सब मालूम है परवाज शबनम की। प्रातः काल घास के ऊपर मोती के समान दमकती हुई ओस की बूंदे सूर्य किरणों के चारों ओर फैलते ही उड़कर ऊपर पहुंच जाती हैं। क्या ये बूंदे अपनी शक्ति से ऊपर उठ जाती हैं? कवि कहता है नहीं, सूर्य की किरणें ओस की बूंदों के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट होने से रोक नहीं सकती। बेताब होकर हाथ फैलाए हुए वे ओस की बूंदों के पास पहुंच जाती हैं और उन्हें अपनी गोद में उठाकर ऊपर ले जाती हैं। इसी प्रकार प्रभु अपने प्रेमी के रूप में भक्त से प्रेम करता हुआ अपने विशाल भुजाओं से उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है, अपना आनंद रूप उसके सामने प्रकट कर देता है, उसे आनंदमय बना देता है। इमैनुअल स्वीडनबर्ग लिखते हैं, द एंजल डू नॉट टर्न टू द लॉर्ड बट द लॉर्ड टर्न्स देम टू हिमसेल्फ। गॉड इज बोथ विथ इन एंड विदाउट, देयरफॉर एन एंजल कैन सी गॉड both within and without himself, within himself when he thinks from love, without himself when he thinks about love. The Divine Love and Wisdom, page 5. देवदूत प्रभु की ओर उन्मुख नहीं होते, प्रत्युत प्रभु ही उन्हें अपनी ओर उन्मुख करता है। प्रभु अंदर भी है और बाहर भी। देवदूत प्रभु को अपने अंदर देखते हैं। जब वे प्रेम पूर्वक उस पर विचार करते हैं और उसे बाहर देखते हैं, जब वे प्रेम पर विचार करते हैं, प्रभु का प्रेम चारों ओर अभिव्यक्त हो रहा है। सूफी भक्तों के शब्दों में, दरियाए इश्क बह रहा लहरों में बेशुमार, प्रेम का दरिया बेशुमार लहरों में बह रहा है। जो भक्त है, साधक है, उन्हें इस प्रेम पारावार के दर्शन होते हैं। सूफी संत प्रकृति के दृश्यों में उसी प्रेममयी भगवत छवि का दर्शन करते हैं। उनकी प्रेम प्रणाली में खुदाबंद करीम लैला है और भक्त मजनू है। डॉक्टर ताराचंद ने अपने ग्रंथ इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर के पृष्ठ 62-63 पर सूफी संत इब्न सीना का वर्णन किया है। इब्न सीना खुदाबंद करीम या स्वयंभू परमात्मा को शाश्वत सौंदर्य की निधि मानते थे, जिसका स्वभाव अपने सौंदर्य का प्रकाशन है। संपूर्ण सृष्टि में उसी परम प्रभु का सौंदर्य व्यक्त हो रहा है। सृष्टि के जड़ तथा चेतन पदार्थ दर्पण के समान है। उनमें जहाँ जहाँ सुंदरता है, वहाँ वहाँ मानो उसी के सौंदर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। सौंदर्य की निधान उस परम सत्ता को इसी हेतु सौंदर्यमय आकर्षक स्त्री का रूप प्राप्त हुआ। भक्त इस छविवती के प्रतिबिंब को देखकर ही उस पर आसक्त और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। ही कंसीव्ड ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी एज एटर्नल ब्यूटी हूज नेचर बींग सेल्फ एक्सप्रेशन इट सॉ इट सेल्फ रिफ्लेक्टेड इन द यूनिवर्स मिरर। दिस सेल्फ एक्सप्रेशन इज लव, फॉर लव इज एप्रिशिएशन ऑफ द ब्यूटी विच इज परफेक्शन। Page 63। इस पद्धति का हमारे मध्यकालीन हिंदी साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ा है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में ही नहीं, राधा वल्लभी संप्रदाय में भी यह प्रभाव परिलक्षित होता है और अंत में आकर राम संप्रदाय भी उससे अछूता नहीं रह सका है। दूसरी ओर वैष्णव सखी संप्रदाय का सूफी संप्रदाय पर भी प्रभाव पड़ा है। वैसे प्रेम की दोनों पद्धतियों के सम्मिश्रण या समन्वय की ओर इन संप्रदायों के कवियों का ध्यान गया है। जायसी ने जितना रतन सेन को साधक के रूप में साध्य सुंदरी पद्मावती के लिए कष्ट झेलते हुए चित्रित किया है, उतना ही पद्मावती को रतन सेन के लिए। सूर में भी राधा और कृष्ण का अन्योन्य आकर्षक सौंदर्य, अन्योन्य प्रेम तथा अन्योन्य रूप धारण इसी प्रभाव की ओर संकेत करता है। प्रेम के प्रेमी और प्रिय दोनों पक्षों में प्रेम की समतुल्यता होनी चाहिए। एक उर्दू कवि ने लिखा है, उल्फत का मजा तब है जब दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। भक्त और भगवान के इस प्रेम संबंध में दोनों ओर प्रेम की उष्णता होती है। इसी हेतु उसमें प्रेमी प्रिय हो सकता है और प्रिय प्रेमी का रूप धारण कर सकता है। प्रेमी में प्रिय का रूप और प्रिय में प्रेमी का रूप छिपा रहता है। अतः भक्त और भगवान दोनों ही प्रेमी और प्रिय कहे जा सकते हैं।